तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूपा कदामयं ददातीश पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगणललिताश्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरविशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशः गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्तकंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण আমার জীবন সদা পাপের তো নাহি কবু নিরলে আমার আমার জীবন নিজ সুখ লাগি পাপে নাহি রে দয়া হীন স্বার্থ নিজ পর সুখে দুঃখী সদা মিথ্যা ভাবি পর সুখে দুঃখী সদা মিথ্যা ভাবি पर दुख सुखतारा अशेष कामना बुद्धिमा के मद मत्त सदा विषय मोहित मद मत्त सदा सागर विभूषण मित्राणस्य हत सुकार्य विरत अकार्य मित्राणस्य प्रतिष्ठा लागिया साक्ष्य चरण प्रतिष्ठा लागिया लोभ हत सदा कामी एहन दुर्जन सज्जन वर्जित अपराधी शुभ कार्य शून्य सदानाथ मन शुभ कार्य नाना दुखे जर जर सार्थकेखन उपाय विहीन ताके बिना चिन्तन भकति विनोद प्रभुर चरणे भकति विनोद करे दुख निवेदन आमार जीवन सदा पापे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare
प्रतिष्ठाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ परिधाम की जय। इस्कॉन मीरा रोड की जय। श्री श्री राधा गिरिधरी भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। समवेत वैष्णव भक्त बृंद की निताय गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी ऑल ग्लोरी। पानी नॉर्मल मेरा गला बज गया। मेरा जीवन सदा पाप पुण्य कार्य में व्यतीत हुआ, अतः मुझ में पुण्य लेस मात्र भी नहीं। मैंने इतनों को अत्यधिक क्लेश दिया है। वस्तुतः तो मुझे लगता है कि मैंने समस्त जीवन को कष्ट पहुंचाया है। मुझे अपनी प्रसन्नता के लिए पाप पुण्य कार्य को करते हुए भी डर नहीं लगता, क्योंकि मैं निर्दयी एवं स्वार्थी हूँ। दूसरों को प्रसन्नता को देखकर अप्रसन्न हो जाता हूँ। मैं सदैव झूठ बोलता हूँ तथा दूसरों को कष्ट में देखकर मुझे प्रसन्नता होती है। मेरे हृदय में अनंत भौतिक इच्छाएं हैं। मैं क्रोध से भरा हुआ तथा मिथ्या अहंकार से फूला हुआ हूँ। वस्तुतः मैं सदैव मिथ्या अहंकार से मदनमत तथा भौतिक आनंद के विचारों से व्याकुल रहता हूँ। द्वेष तथा घमंड मेरे आभूषण हैं। मैं निद्रा एवं आलस्य द्वारा पराजित हूँ। मैं पुण्य कार्य करने में सदा दूर रहता हूँ, परंतु व्यर्थ के कार्य कर सदैव उत्साहित रहता हूँ। मैंने नाम एवं प्रतिष्ठा हेतु धोखाधड़ी को अंगीकार कर लिया है। मैं सदा लालच की बस में रहता हूँ तथा कामेच्छाओं से भरा हुआ हूँ। मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ कि साधु पुरुषों ने मुझे भी त्याग कर दिया है। मैं निरंतर अपराधों में रहता हूँ। मैं समस्त पुण्य कर्म से हीन हूँ तथा मेरा मन सदा वांछित वस्तुओं में भटकते रहता है। इसी कारणवश मैं विभिन्न दुखों द्वारा ग्रस्त हूँ। अब मैं वृद्ध हूँ तथा मेरे पास अन्य कोई उपाय नहीं है। इसके अलावा मैं निर्धन हूँ, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि मैं भगवान के श्री चरण कमल में अपना दुख निवेदन कर रहा हूँ। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की आज सेमिनार की दूसरे दिन है। जैसे आप पहले से चार प्रकार के अनर्थ की बारे में कहा गया था, सुकृति जात और दुष्कृति जात अनर्थ की काल चर्चा किए थे। आज विशेष रूप में अपराध अपराधत्व या अपराध जात अनर्थ, जो कि भिन्न भिन्न अपराधों के कारण जो अनर्थ हैं दिखाई देता है, जो हमें हरि भजन में निष्ठा को प्राप्त करने में बाधा डालते हैं, तो उसकी आज चर्चा करेंगे। भक्ति विनोद ठाकुर और एक सुंदर भजन में गाते हैं कि केनो हरे कृष्ण नाम हरि बोले मन प्राण कांदे ना। कहते कि मैं हरि भजन करने से, हरि भजन करना ही तो मेरा धर्म है, लेकिन मेरे मन प्राण नहीं रो रहा है। हरे कृष्ण हरि बोलने पर भी मेरे मन प्राण रोता नहीं, अंतकरण में मेरी रोन माने भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति के उद्रेक नहीं होता है। ऐसे हरे कृष्ण तो बोलते रहता हूँ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंख से अश्रु नहीं आता, बा अंतकरण में कोई ऐसे मुझे अनुभव नहीं होता है शुद्धता के। पक्षी ना जानी कोनो अपराधे मुखे हरेक नाम बोलो ना। पक्षी अर्थात यहां कर जीवात्मा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस गीत निकल, इसी संघ को निकल इसमें। तो पक्षी का अर्थ जीवात्मा को संबोधित करते हुए कहते कि पक्षी ना जानी कोनो अपराध है, अरे तूने किसने किस प्रकार अपराध ऐसे किया है जिसके लिए तेरे नाम से, तेरे मुख से शुद्ध हरिनाम उच्चारण नहीं होता है। चाहे तू ऐसे ही भजनाम कर रहा है क ख ज झ जैसे ही, हरे कृष्ण नाम तो ले रहा है लेकिन शुद्ध नाम नहीं है। ऐसे ही नाम अक्षर वही रहे नाम नहीं है, नाम अक्षर ऐसे लेता है लेकिन शुद्ध नाम नहीं हो रहा है। बनेर पक्षी रे खिलाम हृदय मंदिर है मधुमखाए हरिनाम, पक्षी रे सिखाई ले सीखे हे बनर बनेर पक्षी। मैंने अपने हृदय की कुटिया में अंदर तुम्हारे लिए कुछ बहुत ध्यान पूर्वक रखा है। भगवान हरि का पवित्र नाम जो शुद्ध मधुर शहद से पूरा भर कर बह रहा है, शुद्ध मधुरता से ओतप्रत है। हे पक्षी यदि तुम्हें सिखाया जाता तो तुम इस नाम को उच्चारण करना सीख जाते हो। पक्षी सकल नाम बोलते पारो केनो हरे कृष्ण नाम बोलो ना, केनो हरे कृष्ण नाम हरि बोले मन प्राण काम देना। एक पक्षी तो समस्त नाम को सरलता से बोलने के योग्य होता है, फिर मेरे हृदय का यह पक्षी हरे कृष्ण का नाम जप करने के लिए क्यों मना कर रहा है? ओहो पवित्र नाम हरे कृष्ण का उच्चारण करते समय मेरा हृदय क्यों रोता नहीं है? पक्षी ठाकुर स्वयं को स्वयं प्रश्न पूछ रहे। चलो पक्षी रूपेर देशे जाइए, जे देशे मनेर मानुष आशा जो आया नहीं। रूपेर देश मैंने आध्यात्मिक जगत को चलो, हे पक्षी आओ चलो सत्य एवं स्थायी सौंदर्य की भूमि आध्यात्मिक जगत में चले। यह वह स्थान है जहां मेरे मन का काल्पनिक मनुष्य पुनः कभी नहीं आएगा और जन्म व मृत्यु के क्रम में फिर कभी नहीं घूमता रहेगा। पक्षी रे तोर मरण काले ते चारों भी बासे डोलाते हैं, अरे चार जनते कांधे करें लय जावे स्मशान घाटे थे। ये पक्षी मृत्यु के समय तुम्हारा शरीर चार व्यक्तियों के कांधे पर उठाए एक अंत्येष्टि संस्कार करने वाली अर्था पर रख दिया जाएगा और स्मशान भूमि में ले जाएंगे। अरे तोर मुखे आगुन जिहे तुले की करो भी ताई बोलो ना, हाय दाह अग्नि तब तुम्हारे मुख में प्रवेश कर जाएगी और पूर्ण रूप से तुम्हारी जिह्वा का नष्ट कर देगी, उसकी शक्ति छीन लेगी। वहां ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम स्वयं की रक्षा कर सको, क्योंकि उस समय बहुत देर हो चुकी होगी, तुम और अधिक समय के लिए बोलने के योग्य नहीं रहोगे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं को स्वयं व हम सभी को ये निर्देशन दे रहे कि शुद्ध हरिनाम बोलना यही हमारा कर्तव्य है। केनो हरे कृष्ण हरि बोले मनो प्राण काम देना। ये हरे कृष्ण पवित्र हरे कृष्ण ना और हरि नाम को उच्चारण करते समय मेरा हृदय रोता क्यों नहीं है? सभी को अपने आप ये प्रश्न जिज्ञासा करना चाहिए। तो इसके बारे में विशेष रूप से ऑफेंस है, क्यों हम ऐसे ही शुद्ध हरिनाम नहीं ले पाते हैं? तो इसके तीन प्रकार के अपराध हैं विशेष रूप में कहा गया, नाम अपराध, सेवा अपराध और धाम अपराध। जो धाम में रहते हैं वृंदावन में मायापुर में जगन्नाथपुरी में जो रहते हैं उनको तो धाम अपराध लगते हैं, एक अपराध उनको ये एक्स्ट्रा पालन करना पड़ता है, अपराध से बचना पड़ता है। लेकिन आप भी जब धाम में जाते हो तो धाम अपराध से बचना चाहिए। इसलिए कहा गया कि अपराध शून्य हया लोह कृष्णा, अपराध से मुक्त होकर जब हम कृष्ण नाम उच्चारण करेंगे तभी उसकी प्रकृत शुद्ध नाम लेने के मौका हमें प्राप्त होगा, शुद्ध नाम ले पाएंगे। तो ये तीनों प्रकार के अपराध से कौन अपराध आपको सबसे जघन्य प्रतीत होता है? नाम अपराध। नाम अपराध के अंदर ही वैष्णव अपराध आता है जो सबसे जघन्य है। नाम अपराध, दस नाम अपराध तो सबसे पहला अपराध है कि सताम निंदा नाम न परमम अपराधम वितरुते, ये सबसे जघन्य अपराध है। कौन सा? सताम निंदा, वैष्णव की निंदा करना। इसमें दो अपराध दशनाम अपराध से वैष्णव अपराध के साथ शामिल है, सबसे पहला अपराध और दूसरा नहीं और कौन सा तीसरे अपराध। पहला अपराध है कि उन वैष्णवों की निंदा करना जो अपने जीवन को संपूर्ण रूप में भगवान के प्रचार और प्रसार में हरिनाम के प्रचार प्रसार में जीवन को समर्पित कर रखे हैं, और तीसरे अपराध है गुरु को अवज्ञा करना या उन्हें साधारण मनुष्य समझना। तो इसलिए सबसे पहला अपराध है कि वैष्णव अपराध सतांग निंदा, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये कैसे अपराध है? पागल हाथी के समान। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उखाड़े बा छिन देता सुखी जाए पाता, पागल हाथी के समान है अब वैष्णव अपराध। जैसे कोई व्यक्तिने वा कोई माली वा कोई गार्डनर बहुत जत्न करके अपने गार्डन को कई साल 10-12 साल बाद इससे भी ज्यादा 15 साल लगकर बहुत सुंदर गार्डन बगीचा बनाया, कई प्रकार के फल फूल में हरा भरा, वो बगीचा के अंदर यदि किसी ना किसी कारण से पागल हाथी घुस गया तो कुछ खाएगा, कुछ सुंड में उखाड़ कर फेंक देगा, कई मिनट में थोड़े समय में पूरे गार्डन को ध्वस्त विध्वस्त कर देता है। तो इसी प्रकार वैष्णव अपराध जो आम भक्ति में यदि कर बैठते हैं वह हम कई दिनों से श्रवण कीर्तन करते 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 जो भक्ति भक्तिवत्ता को थोड़ा आगे बढ़ाए हैं, श्रवण कीर्तन जड़े करे सचन है भाग्य ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज माली हया सही वृक्ष करे आरोपण श्रवण कीर्तन जड़े करे सचन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा रूप गोस्वामी को ब्रह्मांड में इसे भ्रमण करते करते किसी भाग्यवान जीव को भक्ति लता के बीज सदगुरु या कृष्ण की कृपा से प्राप्त होता है और उसने श्रवण कीर्तन जल उसमें सेचन करके उसको उगाया, लता उग गया, आगे बढ़ते जा रहा है, ऐसे बढ़ते बढ़ते ये भौतिक ब्रह्मांड किसी आवरण को क्रॉस करके बिरजा नदी को क्रॉस करके आध्यात्मिक जगत में भी प्रवेश कर गया, वैकुंठ जगत में, चाहे वो भगवान के चरण कमल को ही स्पर्श कर लिया है, भाव के स्तर पर आ गया, लेकिन फिर भी यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उखाड़े बा छिंडे तार सुखी जाए पाता। लेकिन इस प्रकार होते हुए भी यदि व्यक्ति कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध कर बैठता है तो फिर वो कभी कभी तो उखाड़ की जड़ से ही भक्ति लता को फेंक देता है। व्यक्ति इसको में आया 15-20 साल भक्ति किया, इसके बाद फिर पैंट शर्ट पहनकर चले जाते हैं, कर्मी बन के फिर कहीं फैक्ट्री में काम करने लगता है। कारण है कि कहीं ना कहीं वो वैष्णव अपराध करता है, वैष्णव निंदा करता है, वैष्णव की बुराई चिंतन करता है, किसी ना किसी आगे पढ़ेंगे कैसे वैष्णव अपराध होता है। लेकिन वैष्णव अपराध करने से कोई क्षमा नहीं देता है, हाँ कोई नहीं क्षमा करे, भगवान नहीं क्षमा करते हैं, अन्य सब कुछ पाप तो हरिनाम से मिट जाते हैं, हर स्थान अपराध है तारे हरिनाम, लेकिन ये मिटेगा नहीं, कौन सा अपराध, ये बड़े जघन्य है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे कि ये पागल हाथी है, इससे बचो। यदि वैष्णव अपने कहने के लिए कोई चाहता है, भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो अवश्य वैष्णव अपराध से बचकर रहे। तो वैष्णव कौन है, किसको वैष्णव कहते हैं, ऐसा ही तो चैतन्य महाप्रभु कहते जीव मात्र ही वैष्णव, जीव का स्वरूप ही कृष्ण के नित्य दास, जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास, ये स्वरूप है भगवान के नित्य सेवक। वैष्णव का अर्थ क्या, भगवान के नित्य सेवक और जो सेवक है वही वैष्णव है, वैष्णव इसलिए सभी लोग प्रत्येक जीवात्मा वो वैष्णव ही है, लेकिन वो भूल गया उस बात को स्वीकार नहीं करता। लेकिन केहू माने केहू ना माने सभी तारदास वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत कहते, कोई स्वीकार करता है कोई स्वीकार नहीं करता है, लेकिन सभी उनकी अंश है और उनके दास है। केहू माने केहू ना माने सभी तारदास, जेहू ना माने अपना गुणे सही जाए नाश, जो इस बात को स्वीकार नहीं करता है तो राक्षस है, तो इसलिए वो अपना गुण से ही वो अपने ध्वंस हो जाता है, लेकिन सभी लोग वैष्णव वैष्णव ऐसा ही ब्रॉड सेंस में देखने से जीव मात्र ही वैष्णव है। जो उत्तम अधिकारी वैष्णव है वो सभी को वैष्णव देखते हैं, जो उत्तम वैष्णव है वो सभी को कृष्ण के दास के रूप में देखते हैं। लेकिन हमें साधारण दृष्टि से वैष्णव के कहते ना, जो भगवान विष्णु को आराधना करता, भगवान के चरण में शरणागत है, हु इज सरेंडर टू विष्णु इज कॉल्ड वैष्णव, भगवान विष्णु की आराध्य मानता तो उसको हम वैष्णव कहते हैं। लेकिन और ब्रॉडर सेंस में देखेंगे तो सभी हैं। तीन प्रकार के वैष्णव होते हैं, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ वैष्णव। उत्तम वैष्णव किसको कहते हैं, कई प्रकार के डेफिनेशन है, लेकिन यहां पर विशेष रूप में चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा दिए हैं सनातन गोस्वामी को वहीं से ले रहे हैं। जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन क्रमे क्रमे सही भक्त हो वे उत्तम, जिसके श्रद्धा कोमल है, अभी जैन किया इसकन में लेकिन सुना पढ़ा थोड़ा, श्री कृष्ण भगवान है, कृष्णस्थ भगवान स्वयं ब्रह्म संगीता गाता डेली बैठकर मंदिर में, तो ब्रह्म संहिता गाते थे भाव कक्षा के पहले, थोड़ा थोड़ा उसको विश्वास आया, लेकिन अभी श्रद्धा पर दृढ़ नहीं। जब इसको कोई प्रलोभन दिखाएगा, कोई दूसरे कुछ फायदा भौतिक लाभ दिखाएगा, तो फिर छोड़ के भाग जाएगा। उसको शास्त्र के अर्थ कुछ शास्त्र भी जानता नहीं है, भक्ति में इतनी सुदृढ़ नहीं है, है? नियोफाइट। तो इसको कहते हैं कनिष्ठ वैष्णव। लेकिन ऐसे वैष्णव भी यदि वैष्णव के संग में रहेगा, वैष्णव के साथ में रहेगा और नियमित रूप से रूल रेगुलेशन पालन करते रहेगा, क्रमे क्रमे सही भक्त हुई वे उत्तम, आस्ते 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 वो कनिष्ठ भी फिर मध्यम और उत्तम को प्राप्त स्वर को जा सकता है। मध्यम अधिकारी के बारे में महाप्रभु ने कहा कि शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। मध्यमकारी मध्यम अधिकारी वैष्णव शास्त्र में इतने सुनिपुण नहीं होता है, सारा शास्त्र का सिद्धांत को नहीं जानता है। कोई मायावादी साथ में आ गया, युक्ति तर्क में उसको परास्त नहीं कर सकता, इतने उसको पूरे शास्त्र का ज्ञान नहीं है डिटेल, लेकिन सिद्धांत को जानता है और गुरु के वचन में उसको पूर्ण निष्ठा है। इसीलिए वो कोई भी कहीं भी परास्त हो जाएगा, कहीं भी युक्ति तर्क में हार जाने पर भी वो कृष्ण भावना को छोड़ेगा नहीं। इसलिए वो दृढ़ श्रद्धावान, श्रद्धा है गुरु के वचन में, शास्त्र वचन में और पूरे श्रद्धा है, लेकिन युक्ति तर्क में इतने सुनिपुण नहीं है, शास्त्र ज्ञान में इतने सुनिपुण नहीं है। लेकिन फिर इस प्रकार भक्त भी भाग्यवान है, क्योंकि ये इस प्रकार वैष्णव सद्गुरु के चरण में पूर्ण निष्ठा, कृष्ण के चरण में निष्ठा, जानता है कृष्ण तो भगवान स्वयं, गुरु ने कहा शास्त्र में कहा तो पूर्ण विश्वास है, चाहे डिटेल इसको युक्ति तर्क पता नहीं है, लेकिन कभी भी वो डाइवर्टेड होने का चांस नहीं रखता है, मैंने पूरे निष्ठा है। तो इस प्रकार व्यक्ति मध्यम अधिकारी भाग्यवान माना जाता है। उत्तम वैष्णव उसको होते हैं जो शास्त्र युक्ति सुनिपुण, जिसको पूरे शास्त्र की युक्ति आता है, किसी प्रकार के व्यक्ति की वो शास्त्र युक्ति में परास्त कर सकता है, हैं? दृढ़ श्रद्धा, उसकी दृढ़ श्रद्धा भी है, थ्योरेटिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है, वो किसी के साथ में युक्ति तर्क करेगा, कोई मायावादी उसके समक्ष में आएगा उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, वो उसको युक्ति तर्क में परास्त करने के लिए उसके पास में है अकाट्य प्रमाण है, वो उसको परास्त कर सकता है। और इस प्रकार व्यक्ति जो शास्त्र युक्ति में सुनिपुण है और जिसको दृढ़ श्रद्धा है, गुरु आदर्श में प्रचार में लगा हुआ है, ऐसा ही व्यक्ति को उत्तम अधिकारी कहा जाता है। उत्तम अधिकारी से ही तारा है संसार, वो एक उत्तम अधिकारी पूरा संसार को पूरा विश्व को उद्धार कर सकता है। तीनों प्रसार करते हैं, कनिष्ठ भी मध्यम भी उत्तम भी, लेकिन उत्तम वैष्णव होता तो एक ही संसार को उद्धार कर सकता है। ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने, इसलिए प्रभुपाद ने अकेले ही प्रचार किए पूरा विश्व में, एक उत्तम वैष्णव पूरे प्रचार कर सकता है और उसे मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी उस स्तर के प्रचार नहीं कर सकते। किस स्तर के? जिस स्तर के एक उत्तम वैष्णव करता है। लेकिन अपराध जब ये वैष्णव के चरण में होता है, चाहे कनिष्ठ के चरण में हो, फिर भी आपको रिएक्शन भोगना पड़ेगा, इसमें कोई माफी नहीं है। अपराध आप कहीं भी करोगे, उत्तम वैष्णव हो, कनिष्ठ वैष्णव हो, मध्यम वैष्णव, कहीं भी अपराध करोगे, अपराध की प्रतिक्रिया आपको भोगना पड़ेगा। कृष्ण भजन में निश्चित रूप में बाधा आ जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। वैष्णव अपराध जो हम करते हैं विशेष रूप में तीन उपाय से होता है, मन से, वाणी से और तीसरा डायरेक्ट एक्शन के माध्यम से। यहां पर मन में अपराध किया हुआ व्यक्ति के उदाहरण दी गई कि गदाधर पंडित सोचे, किसके बारे में? पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में, जो चैतन्य लीला को जानते हैं। गदाधर पंडित पंचतत्व में आप जानते हैं, गदाधर पंडित हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद। गदाधर पंडित महान भक्त थे और इनको साधु संत में बड़े आदर था। जब बच्चे थे, जब उन्होंने ज्यादा किशोर अवस्था में थे, लगभग 13-14 साल उम्र में, तो उस समय में उन्होंने नवद्वीप में कोई भी साधु आता था उसको मिलने जाते थे। साधु संतों को बड़ा आदर करते थे, उनके पास जाते थे, उनकी सेवा करते थे और उनके चरण स्पर्श करना, उनके झुटन खाना, उनसे मैंने उनकी पूरे प्रकार की सेवा करने बड़ा आनंद आता था। तो इस बात को जानते थे, इसलिए एक बार दूसरे चैतन्य महाप्रभु भक्त था मुकुंद दत्त, तो उन्होंने गदाधर को कहा कि गदाधर एक नवदीप से नवदीप में एक महान वैष्णव आया है, परमहंस वैष्णव, तुझे चलो मिलाता हूं उनसे। है वो कौन थे? पुंडरीक विद्यानिधि। कृष्ण लीला में उन्होंने वृषभानु के अवतार थे और महान वैष्णव थे, लेकिन वो जब गदाधर पंडित गए मुकुंद के साथ में, देखे कि वो कैसे बैठे हुए थे, बहुत बड़े उच्च सिंहासन के ऊपर बैठे थे, बहुत बड़े कुर्सी में कुर्सी के ऊपर बैठे हुए थे, और उनकी एक साइड में एक चामर चामर डुलाता था, दूसरे साइड में कोई मोइल पंखा डुलाता था, और स्वयं पहने हुए थे, बड़ा सिल्क ड्रेस पहने हुए थे, बहुत कॉस्टली ड्रेस, सिर में पगड़ी था बड़ा सिल्क का पगड़ी, और उसमें मोइल के पहने से कुछ पंख जैसे हम डेटी को ड्रेस करते थे मैंने लगा हुआ था, अवश्य वैष्णव तिलक था, कंठी था, लेकिन वो बड़े आडम्बर से राजकुमार की तरफ बैठे हुए थे, एक राजा के पुत्र जैसे बैठा हुआ ऐसे ही लग रहे थे। इसको देखकर गदाधर पंडित ने थोड़ा सा मन में विकार आया, बोला ये कैसे वैष्णव है, ये मुझे मजाक करने के लिए ले आया, अभी तक तो नवदीप में कितनी वैष्णव आए, मैं कितनी को देखा हूँ, ईश्वरपुरी से लेकर माधवेंद्रपुरी, कितनी महान वैष्णव को मैं दर्शन किया हूँ, लेकिन ये कौन सा वैष्णव है, इतने बड़े सिंहासन के ऊपर राजा के लड़का की तरफ बैठा है, दोनों एक पंखा झुला रहा है, कौन एक चामर झुला रहा है, और उधर पान खाने खा के थूकने के लिए तिकदान भी रखा हो गया, और ऐसे कैसे वैष्णव है, इतने कॉस्टली ड्रेस पहना हुआ, पंख मयूर पंख है ऐसे सिर में धारण किया, ये क्या है, सर ये मुझे मजाक उड़ाने के लिए मुझे आज यहाँ ले आया। तो ऐसे कहकर थोड़ा पुंडरीक विद्यानिधि के बारे में उनकी गलत भावना आ गया, कि इनके मन में गदाधर पंडित मन में ऐसे माइंड, लेकिन वो तुरंत सत्र, लेकिन इनके मनोभाव को जानते हुए उन्होंने मुकुंद ने श्रीमद भागवत के प्रसिद्ध श्लोक आवृत्ति करने लगा, अहो वकीयम तनकालकूटम है। तो वो श्लोक पढ़ने लगा कि भगवान कितनी दयालु है, वो बकी बकासुर की बहन कौन पुतना ने अपने स्तन में कालकूट विष देकर भगवान को मारने के लिए आई थी, भगवान ने फिर भी उसको अपने माँ की असिस्टेंट बना दिए, जसोदा के असिस्टेंट धाई पद में अपने धाम में भेज दिए, ऐसे दयालु भगवान के चरण कमल को छोड़कर कहाँ दूसरे जगह में कोई शरण के लिए जाएगा, शरण लेने जाएगा। तो ये जो श्लोक पढ़ने लगे तो पुंडरीक विद्या इतनी उच्ची सांसे तुरंत ही पछाड़ खाकर नीचे गिरे, इनकी कृष्ण भाव प्रेम पूरा उद्रेक हो गया, अष्टसाथी की विकार प्रकट हो गया, रोते रोते उनके वस्त्र कहाँ गया, उनको पगड़ी कहाँ गया, उनको कुछ भी पता होश नहीं रहा, आंख से अश्रुओं की धारा नदी के समान बहने लगा, हे कृष्ण हे गोविंद कहाँ है मेरे प्राणनाथ, और पूरे पागल की तरफ जमीन में कई घंटे तक ऐसे ही कभी कभी मूर्छित हो जाते थे, फिर उठते ऐसे देखकर गदाधर पंडित समझ गया ये महाभागवत वैष्णव है, इनके शरीर में रोमांच पूर्ण कष्टसाथी विकार प्रकट हो गया, केवल भगवान की एक लीलाओं को श्रवण करके ही इनके दया भाव को स्मरण कर ने श्रवण करके इसलिए मैं बड़ा अपराधी बन गया हूँ, मन में जो इनके बारे में गलत सोचा मैं अपराधी बन गया, इसलिए उन्हें तुरंत ही अपने मनोभाव को व्यक्त किए मुकुंद को और तुरंत ही उनसे माफी मांगने के लिए गए, जब उन्हें प्रतिष्ठित हो गए फिर माफी मांग ली, और केवल माफी नहीं मांगे, सोचे कि मैं जो अपराध किया हूँ इसकी कैसे प्रतिकार हो सकता, यदि मैं इनको गुरु रूप में स्वीकार कर लूंगा तो गुरु जो होता शिष्य का सारे पापों को स्वीकार करता, अपराध सब कुछ स्वीकार कर लेता है, क्षमा कर देता है, तो इसलिए उन्होंने गौरांग महाप्रभु से परमिशन लेकर गदाधर पंडित फिर आकर इनसे दिखा ली, किनसे? पुंडरीक विद्यानिधि से। इस प्रकार वो अपने अपराध से मुक्त हो गए, इसलिए कभी कभी हम मन से अपराध करते हैं, ऐसे हम सोचते हैं मन से अपराध किया कलयुग में क्या होता है, मन से ऐसा थोड़ी होता है, कार्य से तो कुछ नहीं किया, नहीं ये भी जघन्य, जब आप थिंकिंग को ऐसे मन में माइंड में आ जाएगा फिर आस्ते आस्ते वो आपको प्रोसेस में आगे बढ़ेगा, थिंकिंग फीलिंग विलिंग फिर एक्टिंग में आ जाएगा। तो इसीलिए आचार्य लोग ने सिखाया, गदाधर पंडित राधारण की अवतार मानी जाती है, लेकिन उन्होंने भी आचरण करके सिखाया, जैसे मन में भी अपराध होता है तो आपको भी इसको व्यक्त करना चाहिए और कम से कम उनसे माफी मांग लेना चाहिए, बोलना चाहिए कि मैं ऐसे ही आपके बारे में गलत सोचा था, तो वो मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपराधी हूँ, से अपराध मार्जन होता है, तो इसलिए मौन से भी अपराध करने पर भी आपको माफी मांग लेना चाहिए। दूसरे कभी कभी वाणी से कठोर वाणी हम कहते किसी को गाली देना शुरू करते हैं, यहाँ पर गोपाल चक्रवर्ती कहानी आप सुने होंगे, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जब गोवर्धन और हिरण्य मुजुमदार के सभा में नाम की महिमा की प्रवचन दे रहे थे, हरिनाम की महिमा। उन्हें कहते थे कि जो व्यक्ति केवल अपराध के साथ भी नाम लेता है, अपराध भी करता, दशनम अपराध से कोई ना कोई अपराध उसे होता, फिर भी नाम लेते रहता, कंटिन्यूस छोड़ता नहीं, तो उस प्रकार व्यक्ति का समस्त भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाते हैं। चाहे कोई भी किसी प्रकार की भौतिक इच्छा इसको है, धन जन कविता सुंदरी, यहां तक कि कोई भारत के प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, भाई इंद्र बनना चाहता है, ये सारे केवल अपराध के साथ नाम लेने से मिल जाते हैं, भौतिक इच्छाएं पूर्ति हो जाती। जब वो आभास नहीं लेता है नाम, आभास न्यूट्रल स्टेज, अपराध और नहीं कर रहा लेकिन शुद्ध नाम भी नहीं है बीच में, जो अपराध मने कुछ भौतिक इच्छाएं थोड़ा बहुत भी रहता है, लेकिन इसे आभास नाम के कारण तो अजान बीड़ के समान वो भगवत धाम को जाने में योग्य बन जाता है। नाम आभास अजान बीड़ वैकुंठ गिला रहे, लेकिन जो शुद्ध नाम लेता है अपराध से बचकर, तो उसको भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त होता है। हम इसलिए कहते चली है जो अपने वैष्णव से अवश्य दशना अपराध से बचकर ही हरे कृष्ण मंत्र के जप करें, जो कि शीघ्र से शीघ्र भगवान के चरण कमल में प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाए। तो इसलिए अपराध शून्य होकर नाम लेने से भगवान के चरण में प्रेम मिलेगा। लेकिन एक व्यक्ति वहां गोपाल चक्रवर्ती बैठा था, एक यंग लड़का 22-23 साल के ब्राह्मण घर में जन्म हुआ था, एजुकेटेड लड़का था, बहुत पढ़ा लिखा, अच्छे सुंदर शरीर उसका था, लेकिन वो व्यक्ति को सहन नहीं हुआ, कर्मकांडी ब्राह्मण था, स्मार्त ब्राह्मण, इसलिए खड़ा होकर बोले क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग, सुन रहे हो हैं, ये कुछ भी बोल रहा है आप लोग, बस बस बैठ के चुपचाप शांत में, इतने पंडित लोग बैठे हो सब चुप, क्या बोल रहा है, अपराध के साथ नाम लेने से जो मिल जाता है वो कोई भारत के नहीं, इंद्र बन जाएगा, चंद्र बन जाएगा, भारत का प्राइम मिनिस्टर राजा बन जाएगा, ये सम्राट बन जाएगा, केवल अपराध के साथ नाम लेने से, ये क्या बोल रहा है, पहले इतने सारे यज्ञ क्यों वेद में कहा गया, इससे वेदों में इतने सारे कहा गया कि राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पर अग्निहोत्र, तो कितने प्रकार के यज्ञ हैं, और ये यज्ञ प्रथा सब क्यों बता गया, ये कुछ भी बोलता है खाली हरे कृष्ण करने से मिल जाएगा है, तो विश्वास नहीं, वैसे गाली देने लगा, किनको, हरिदास ठाकुर को, निंदा करने लगा, निंदा करते 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 यहां तक कह दिया कि वो ऐसे बकवास करते रहोगे तो मैं तुम्हारा नाक काट लूंगा। ये सुन के सारा सभा में लोग हाहाकार करने लगे, जो गोवर्धन मजुमदार और ये हिरण्य मजुमदार दोनों ने हरिदास ठाकुर को प्रवचन के लिए बुलाए थे, वो लोग सहन ने कि वो गोपाल चक्रवर्ती कहे कि तुम ये सभा से इसी मुहूर्त में निकल जाओ, क्योंकि उन्हीं की वो राजा के समान वो जमींदार थे, बड़े उन्हीं के सब दरबार में ये नौकरी करता था गोपाल चक्रवर्ती, अकाउंटेंट था, तो कहीं तुम आज इससे चले जाओ, आज तुम्हारा नौकरी इधर नहीं है और हमारे घर के साथ कोई संपर्क नहीं तुम्हारा, तुम इसी मुहूर्त में चले जाओ यहाँ। लेकिन हरिदास ठाकुर बड़े दुखी हुए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुमको नाक का काटने का जरूरत नहीं, ये कष्ट तुमको उठाना नहीं पड़ेगा, यदि मैं जो बोल रहा हूँ यदि इसमें कोई मिथ्या हो तो मैं स्वयं अपने नाक काट लूंगा, लेकिन तब उसको निकाल दिया। लेकिन वो जो कहा था कि हरिदास ठाकुर के नाक काट लेगा, 7 दिन के अंदर उसकी स्वयं का नाक सड़कर गल कर गिर गया, यहां से पूरे सुंदर नाक था उसके पूरा सड़के गल गया, प्रमाण करने के लिए हरिनाम की महिमा जो हरिदास ठाकुर ने कहा उनमें कोई झूठ नहीं है, कोड व्याधिग्रस्त होकर पूरे इसके नाक सड़कर गिर गया 7 दिन के अंदर, कहा 7 दिन के अंदर है नाक काट लेगा तो उसके नाक स्वयं का गिर गया। इसलिए जो वैष्णव को ऐसे वाणी से उसी कारण से उनको बोलते हैं, मुख से जिह्वा से बोलते हैं, कुछ डांटते हैं, कुछ गलत बोलते हैं वैष्णव को, उसका प्रतिक्रिया भोगना पड़ता है, इससे वैष्णव अपराध होता है। बाकी किसी एक्शन से स्वयं कुछ डायरेक्ट एक्शन करके दिखाते, ये उदाहरण दिया गया किसका, दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज का, पूरा डायरेक्ट एक्शन, एक बाल ने खड़ा पटक दिया जमीन में, भीषण राक्षस उत्पन्न। आप सब सुने हैं अम्बरीश महाराज की कथा सारे, एकादशी का दिन महाराज अम्बरीश व्रत रखे थे, द्वादशी का दिन पारण के समय सुबह सुबह आ गए दुर्वासा, तो उनको निमंत्रण दिए भोजन के लिए, लेकिन वो जोगी थे, जानबूझकर परीक्षा ले रहे थे किनका, अम्बरीश महाराज के, जमुना के जल में गए, अम्बरीश महाराज मथुरा के राजा थे, और वो गए जमुना में स्नान करने और पानी के अंदर डुबकी रहे और निकाल के निकाल कर नहीं आ रहे थे, जानबूझकर डुबकी रहे, अब पारण के समय बीत जा रहा था, इसलिए अन्य साधु संत की सलाह लेकर महाराज अम्बरीश चरणामृत ले ली, तो उसी से क्रोधित होकर आया और दुर्वासा अपने एक बाल उखाड़ कर बोला कि जानता नहीं मैं कौन हूं, देख तेरे को सर्वण घमंडी राजा, तो मुझे निमंत्रण देकर बिना अनुमति तुम चरणामृत ले लिया, तुम बड़े घमंडी हो। हाँ, लेकिन एक क्रोधित होकर राक्षस को पकड़ के एक बाल उखाड़ के पटक दिया भीषण राक्षस उत्पन्न होकर। कहा कि जाए क्या करेगा राक्षस, कहे कि अम्बरीश महाराज इसको खा ध्वंस कर दे। महाराज तो पूरे अम्बरीश हाथ जोड़कर खड़े थे, महान भक्त थे, अंश असुर होता था, भगवान स्मरण करते थे। तो तुरंत कौन प्रकट हुआ? सुदर्शन। उस राक्षस को मारा और मारने के बाद दुर्वासा की तरफ घुमा। दुर्वासा भय से भागे है? तीनों लोक में कोई स्थान नहीं दिया, भगवान के पास गए। भगवान भी बोले नहीं, नारायण के परलोक इतनी प्रसन्न, इतनी बड़े जोगी था कि इसी जोग शक्ति में वैकुंठ तक जा सकता था, तब इसी भौतिक ब्रह्मांड के जो वैकुंठ क्षीरदक सागर तक जा सकता, क्षीर सागर में विष्णु के पास। तब भी भगवान ने कहे कि यहाँ पर स्थान नहीं है। अहम भक्त पराधीन ही और स्वतंत्र ही वी जय है, ब्राह्मण में स्वतंत्र नहीं, मैं भक्त की भक्ति में पराधीन हूँ। अपराधी तुम मेरे चरण में होता मैं क्षमा करता, मेरे चरण में तुम्हारा अपराध नहीं, अपराध तो अम्बरीश के चरण में। वापस जाओ, वहीं वापस जाओ। साधव हृदय महंग साधुनांग हृदय तु अहम मत अन्यते न जानती नाहम तेभ्य मनागती। मेरे भक्त मेरे अलावा कुछ नहीं जानता, मैं भी मेरी साधु मेरी भक्त के अलावा और दूसरे कुछ नहीं जानता, वही अपराध वही मार्जन होगा है। तो इसलिए यदि किसी एक्शन के द्वारा भी कभी कभी हम अपराध करते हैं, लेकिन सभी वैष्णव अपराध जब तक हम मुक्त नहीं होंगे भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते, भक्ति में आगे नहीं, भजन ठीक से नहीं कर सकते। इसके अलावा कई उपाय से वैष्णव अपराध होता है। कैसे हम वैष्णव अपराध करते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको स्कंद पुराण उद्धृत करके कहते हैं अपने माधुरी कादंबिनी में। हंती निंदंती वई द्वेष्टि वैष्णवानाम न अभिनंदंती क्रुध्यन्ते यान्ति न हर्षम दर्शने पतनानि सत। कति की छह प्रक्रिया से वैष्णव अपराध होता है। जान से हंती माने जान से मार डालने से, किसी को वध करने के लिए प्रयास करने से, निंदा करने से, द्वेष करने से, वैष्णव को अभिनंदन बा अभिवादन के साथ स्वागत न करने से, क्रोधित होने से और वैष्णव को देखकर हर्षित नहीं होने से, ऐसे क्रियाओं के माध्यम से वैष्णव अपराध होते हैं। हंती पहले उदाहरण दी गई, वैष्णव को जान से मारने से अपराध होता है। एक उदाहरण दी गई किसका है? लास्ट कौन मार के लिए प्रयास किया? हिरण्यकशिपु। भिन्न भिन्न उपाय में वध करने के लिए लास्ट में उसका आप बहन को भी कहा कि होलिका को, ये भी अपराधी बन गई। कौन? होलिका। एक तो हिरण्यकशिपु माना जाता है, ये भी सिद्धि था आग के अंदर प्रवेश करके, करने पर भी इसके शरीर नहीं जलते जलता था, तो इसलिए वो कहा कि मैं प्रहलाद को लेकर गोद जा रहा हूँ आग के अंदर, गोद में लेकर प्रवेश कर गई आग। लेकिन वैष्णव अपराध करने के कारण उस समय जल गया, उसका सिद्धि समाप्त हो गई। होलिका जो था कि सिद्धि के आग का अंदर प्रवेश करने से शरीर नहीं जलेगा, वो सिद्धि खत्म हो गया, जल गए, प्रहलाद नहीं जले, लेकिन वो जल गई आग से, आग में समाप्त हो गई, राख बन गई। तो इसलिए ये प्रकार कभी कभी हम जब वैष्णव कोई जान से मारने के लिए प्रयास, जान से मार देता है मारने के लिए प्रयास करा है, तो इससे वैष्णव अपराध बनता है। इससे उसके सब कुछ समाप्त हो जाते, जितने भी पुण्य कर्म जितने भी जो कुछ किया पहले, जो कुछ थोड़ा बहुत कहीं कमाया था पुण्य, सब को समाप्त हो जाते हैं वैष्णव अपराध। इसमें कभी कभी जान से मारने के लिए बा अन्य केस आप देख सकते हैं, कभी कभी ये नहीं कि ये लोग राक्षस थे ये वैष्णव अपराध किए, नहीं, कभी कभी वैष्णव भी करते हैं। ऐसे ही अक्रूर जी के उदाहरण है, अक्रूर जी इतनी बड़े महान भक्त है, नवदा भक्ति में उनके नाम आता है। एक भक्त एक अंग का आचार्य है, कौन सा? बंधन के, बंधन में अक्रूर जी है। लेकिन वो फिर भी वो जो शक्राजीत को मर्डर केस में है, शक्राजीत के मर्डर केस में ये समन्तक मणि का हरण में वो शामिल हो गए थे उनके साथ। कौन कौन थे दूसरे? मोबाइल अप दूसरे के साथ किसके साथ में शामिल हुए थे? सतधर्मा और कृतवर्मा और सतधर्मा, ये दोनों के साथ में ये भी शामिल थे अकुश जी। और भगवान ने जब आए वापस सत्यभामा ने भागते भागते गई, जो भगवान ने हस्तिनापुर में थे वहां से भगवान आए, तो अक्रूर जी भाग गए कहाँ? बनारस, मणि को लेकर, समन्तक मणि को लेकर भाग गए वो बनारस। ये कहा जाता है कि उनको गोपियों के अभिशाप था, इसलिए उनकी मति ऐसा ही बिगड़ गया था, किनकी? अक्रूर जी। लेकिन कभी कभी वैष्णव भी ऐसा ही अपराध में पर बैठते हैं, जान से मत, तो निंदंती, वैष्णव की निंदा करने से अपराध होता है। ये एक उदाहरण यहाँ पर दी गई है चैतन्य चैतन्य के अमोघ और चैतन्य महाप्रभु की निंदा किया है। गोपाल चक्रवर्ती हरिदास ठाकुर की कथा आप लोग सुन लिए ऑलरेडी, निंदा किया गोपाल चक्रवर्ती, उसको परिणाम भोगने पड़ा। अमोघ है ये, इनकी जावा था किनकी, सर्वम भट्टाचार्य की। सर्वम भट्टाचार्य एक दिन महाप्रभु को बुलाए थे भोजन के लिए, पुरंग महाप्रभु भोजन के लिए बीच में बुलाते, बड़े प्रेम करते थे वात्सल्य रस में, और महाप्रभु उनके निमंत्रण रक्षा करके आते थे। लेकिन सर्वम भट्टाचार्य जी जानते थे कि उनकी जो ज्वाई है, जो जामाता है, बड़े निंदक है, वैष्णव के जगह निंदा करता है हमेशा, किसी ना किसी किसके छिद्र देखता है और उसको निंदा करना शुरू करता है। इसलिए महाप्रभु को आए खाने के लिए जिसने बुलाए थे, बड़े दंडा लेकर खड़े थे कि ये जैसे गेट के सामने, घर का रूम के सामने न आए, जिसमें महाप्रभु बैठे थे कमरे में खाने के लिए, के साथ में किचन का रूम उनका एडजस्ट था, किचन से कुक के प्रसाद लाकर लाते थे। लेकिन ये दर्जे में खड़े थे और देखे कि महाप्रभु के पत्ता में कुछ आइटम समाप्त हो गए, तो लाने के लिए अंदर चले गए। इतने ही सुजग में वो अंदर में घुस आया, कौन अमोघ, आकर देखा अरे ये सन्यासी है, 20 आदमी एक खा रहा है, इतनी सारे ये वो क्या सब्जियां है, इतनी और न इतनी सारे आइटम, बाप रे, एक आदमी सन्यासी है, बाप रे, 20 आदमी का खाना खा रहा, निंदा करना शुरू कर दिया किनका, महाप्रभु। देखकर तो सरव हो देखा, इतने सुनते ही बोला, मेरे वज्रपात हुआ उसके दिल में, महाप्रभु को बुला के लाया और इनकी निंदा करने के लिए, बड़े दुखी हुआ, लाठी लेकर भागा उनको मारने के लिए, किसको अमोक को, अमोक ने भाग रहा था। लेकिन वो उसके बड़े पति पत्नी दुखी हो गए, बोले कि बरंग हमारा लड़की है विधवा हो जाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति का मुख हम लोग नहीं देखना चाहिए जो कि गौरांग महाप्रभु की निंदा किया है। महाप्रभु की निंदा करके गया तो इसलिए जाकर ही तुरंत इनको विसुच का बात, डायरिया प्रारंभ हो गया, मरणासन्न हो गया, मरने वाला था, बस बेड का पर पड़ा था। यहाँ पर सर्व होता था, जो उसकी पत्नी भी बड़े दुखी थे, महाप्रभु जब पता चला अमोक का ऐसे स्थिति हो गया, स्वयं आए आकर फिर उसको, क्योंकि रिलेटिव था किनका, सर्वम ठाकुर सर्वम भट्टाचार्य का, तो इसलिए आए आकर फिर इसको बोले कि तुम, उसके छाती में हाथ देकर इसको बोले कि तुम इतने एक शुद्ध आत्मा हो, कृष्ण के नित्य दास हो, लेकिन तुम्हारे मन में ऐसा ही ये अहंकार क्यों प्रवेश किया हुआ, ईर्ष्या निंदा ये सब क्यों तुमसे है, उठो तुम। फिर तो अमोघ को महाप्रभु की विशेष कृपा हुआ, तो फिर वो अपने निंदा करने का प्रबुद्धि छोड़ दिया, महाप्रभु से माफी मांगा बहुत रो रो कर, और वैष्णव अपराध से मुक्त हो गया। कभी कभी द्वेष करने से, ये द्वेष किया कौन, रामचंद्र खान, एक रहता था रामचंद्र खान बंगाल में जो कि राजा था, उसे बेड़ापोल में जो कि हरिदास ठाकुर भजन करते थे, अभी हरिदास ठाकुर तिरुभा हो गया, हरिदास ठाकुर बेड़ापोल में गंगा किनारे भजन करते थे, लेकिन उसी अंचल का जो राजा था वो था रामचंद्र खान। जब हरिदास ठाकुर वहां पर भजन करते थे, डेली हजारों लोग आते थे इनको दर्शन करने के लिए, किनको, हरिदास ठाकुर को, डेली 300,000 नाम लेते थे, गंगा में स्नान करते थे, बैठकर तुलसी के सामने 300,000 नाम जपते थे, हजार लोग आते थे, इनको प्रणाम करते थे, दंडवत करते थे, स्तुति करते थे, फिर जाते थे। राजा बोला कि मैं राजा हूं, कोई मुझे आता नहीं प्रणाम करने, और ये बैठी क्या कर रहा है, वो गंगा के नहीं, हजारों लोग जाते उसको तो प्रणाम करने, ईर्ष्या हुआ, तो इसलिए द्वेष करने लगा और वेश्या को बुलाकर बोला कि जाओ इसको पाठ पढ़ाओ, किसको, हरिदास को है, यंग, इतनी यंग लड़का, यंग जौवन अवस्था में है और एकांत में बैठकर बस बड़ा भक्ति दिखा रहा, जाओ इसके मन में जो काम वासना को जागृत करा सकता है, संभोग की इच्छा उसके मन में फायदा करके आप इसके साथ रहने में कोई वेश्या उसको समा बाध्य कर सकता, तो फिर मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा, ऐसे कई वेश्या को प्रोत्साहित किया, लेकिन एक वेश्या राजी होकर गया, और कितने प्रयास किया है, 3, 1 रात 2 रात, तीसरे रात में भक्त बन गई खुद, कौन विषय ने, बड़ा कहानी है इसको। लेकिन ये जो द्वेष किया रामचंद्र खान, उसी के परिणाम से नित्यानंद प्रभु उसको बाद में जाकर दंडित किए, उसके गांव में गए और उसी के घर के सामने बैठे, रामचंद्र खान की घर को, बड़ा जमींदार था, बड़ा राजा था, तो राजा के घर के सामने भी और एक मंडप जैसे था, और दुर्गा पूजा करते हैं, इसको दुर्गा मंडप कहते थे, बहुत सुंदरता है। नित्यानंद प्रभु अपने सारे कीर्तन पार्टी संकीर्तन पार्टी लेकर वो मंडप में बैठकर कीर्तन प्रारंभ किया, लेकिन वो रामचंद्र खान की कह के यहाँ कीर्तन के नहीं है, यहाँ जगह में जाओ, किसी गोला में देखो, भेज दिया किसी नौकर को बोलने के लिए। नित्यानंद प्रभु को तो बड़े गुस्सा था कि हरिदास ठाकुर के चरण में ही अपराध किया पहले से, इनको द्वेष किया था, तो इसलिए कहे कि हाँ ये हमारे लिए स्थान नहीं है, लेकिन अभी ये स्थान जवनों के लिए है, ये आएंगे और तुम्हें इसकी घर लूटेंगे, सारे कुछ खा यहीं पर इसी घर में ही गो का मने गुमांस खाएंगे, शराब पियेंगे, इसके घर को लूटेंगे, स्त्री ने इनकी स्त्रियों की बलात्कार करेंगे, यही इसके लिए इसके भाग्य में लिखा गया। कहकर उठकर चले गए, तुरंत ही दूसरे दिन में आ गए कौन मुस्लिम लोग का मुसलमान लोग, क्योंकि रामचंद्र खान लोग तो छोटा राजा था, लेकिन दिल्ली से बादशाह का जो कुछ टैक्स देना था इसको, टैक्स टाइम पर नहीं देता था, तो इसलिए एक दिन आ गए सारे मुगल लोग आकर घेर लिए उसको और उसके घर सारा लूटे, माँ पिटाई भी किए, स्त्रियों को बलात्कार किए, सारे धर्म केवल उस पर गांव के लिए एक जनारा दोष है, सारा ग्राम उजाड़ है। एक यदि राजा का कोई नेता दोष करता है, सारे प्रजाओं को इसके परिणाम भोगना पड़ता है। तो इसलिए द्वेष, कभी कभी हम द्वेष के कारण वैष्णव अपराध करते हैं, जैसे रामचंद्र खान द्वेष किया हरिदास ठाकुर के चरण में, इसलिए वैष्णव अपराध किया। न अभिनंदनती डज नॉट ऑफर ऑबेशन से, इसमें कई उदाहरण सब है होता है, लेकिन एक उदाहरण यहां देगी, इंद्र बृहस्पति है, इंद्र की बृहस्पति कौन होते हैं, गुरु होते हैं, लेकिन इंद्र अपने सभा में बैठकर बस नृत्य देख रहा था, अप्सराओं के नृत्य देख रहा, वो बृहस्पति आए स्पिरिचुअल मास्टर, लेकिन वो आसन से खड़ा भी नहीं हुआ है, वहां बैठ के बड़ा भी इंद्र हूँ बैठा हूँ राजा हूँ, देखा है तो गुरु आ रहे, लेकिन इसको तुरंत था कि उठा आसन से खड़े हैं, प्रणाम हाथ जुड़े प्रणाम करें, तो इसी से बृहस्पति नाराज होकर चले गए, आज जाते ही इसके सर्वनाश हुआ है। ये जब बृहस्पति अंतर्ध्यान हो गए, ढूंढने गया लेकिन बृहस्पति नहीं थे, ये अपराध होने के कारण गुरु जो माने गुरु जो कि वैष्णव है, तो उनके अपराध होने के कारण उसके स्वर्गों की सारा ऐश्वर्य समाप्त हो गए हैं, राक्षस लोग आक्रमण करके सब ले लिए थे। क्रोध्यंते वन हु गेट्स एंग्री एट वैष्णव, क्रोधित होने से कई उदाहरण और भी हुए, कई एक तो दुर्वासा का उदाहरण आप देखिए, वो क्रोधित हुआ किनके ऊपर, अम्बरीश महाराज के ऊपर, और कोई उदाहरण आप लोग में मन में है, क्रोध करने से कोई ऐसे वैष्णव जो क्रोध करके अपराध किया, आप लोग भी कुछ उदाहरण बता सकते हैं अपने मन से है, कोई उदाहरण बोलो, ऐसा ही कोई आप सुने पुराण से पढ़े बा कोई शास्त्र से, क्रोधित हो किसी को वैष्णव ने दूसरे का नहीं, कोई व्यक्ति ने दूसरे वैष्णव के ऊपर क्रोधित हुआ है, कौन जगह माधाई क्रोधित हुए किसके ऊपर, नित्यानंद हरिदास की पर, वो भी एक हो सकता है उदाहरण, क्योंकि वो क्रोधित हुए, लेकिन वो कहा था कि दोनों वैष्णव अपराधी नहीं थे, इसीलिए उनको गुरांग महाप्रभु ने कृपा किया, किनको जगाए माधाई, सब कुछ केस है, लेकिन अवश्य यहाँ पर नित्यानंद प्रभु का आक्रमण किए, ये पहला वैष्णव के होंगे, नित्यानंद प्रभु इनको क्षमा करते, वो अपराध नित्यानंद प्रभु के चरण में किए, नित्यानंद प्रभु वो अपराध क्षमा मांगे में अभी फिर भी बोले कि उनको आलिंगन कर लिए, वो पत्थर मानने क्या, वो शराब के जो शराब पीने वाला कूलर को फेंक कर सिर खोल डाले, खून निकालने लगा, लेकिन फिर भी नित्यानंद बोले कि गौर गो हरे कृष्ण बोलो, फिर भी उनको आलिंगन किए। और कोई उदाहरण है क्रोधित होकर अपराध करने का, दक्ष प्रजापति हाँ क्रोधित हुआ किसके प्रति, भगवान शंकर जी के प्रति, शंकर जी के प्रति क्रोधित हुआ, और क्रोधित होकर खूब बहुत कुछ बोला है, गाली दिया सारे भूरी देवताओं की सभा में, सभी बहुत गाली दिया, लेकिन शंकर जी ने सब सहन करके चले गए, सब सहन किए, सहन किए, इसलिए वैष्णव आनंद यथा असंभव वो सहन कर गए, सहन करके गए, लेकिन वो वैष्णव अपराध करने के कारण अंतिम परिणाम इसका क्या हुआ, बकरी का सिर लग गया है, पूरा कहानी आप जो सुफर इनकी चरण शंकर जी का चरण में अपराध किया, शंकर जी तो इन्वाइटेशन नहीं दिया इनको यज्ञ में आने के लिए, लेकिन उनकी पत्नी तो नहीं सुनी सत्य, अपने पिताजी के पास आ गए, लेकिन आकर आप पति का निंदा सहन नहीं कर पाई, वो फिर जंपिंग आन में शंकर जी ने वही सोचा, देखे दूसरे अपनी निंदा करने से सहन करना चाहिए, यदि किसी व्यक्ति ने हमको स्वयं को गाली दे रहा है तो भी तुरंत अपनी सुनी चाहिए, लेकिन हमारे सामने यदि दूसरे वैष्णव का निंदा हो रहा है अपमान हो रहा है उसको नहीं सहन करना, सही, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगा है। यदि आपको गाली दे रहा है कोई, आप इसको सहन करो, लेकिन आपके सामने किसी दूसरे को डांट रहा है, ये फैन मुझे इतना नहीं चाहिए, फैन उधर को, दूसरे को डांट रहा है तो उससे जो उससे यदि आप सहन कर रहे हो फिर आप भी अपराधी बन जाते हैं। वैष्णव निंदा को सुनने से भी अपराध होता है, जो करने वाला निंदक होता है तो अपराधी है, लेकिन जो सुनता है और इसको प्रतिवाद नहीं करता है वो भी अपराधी बन जाता है, हैं? इसलिए शंकर जी देखे छोड़ दिया, अपने पत्नी तो आई, लेकिन पार्वती के प्रति जब ये अन्याय किया, फिर पार्वती को भी बहुत कुछ कहा, पति का निंदा किया, उनके शंकर जी की निंदा किया, पार्वती से झांस दी, वैष्णव निंदा सुनना नहीं चाहिए है। शास्त्र कहता है कि वैष्णव निंदा यदि कोई कहीं कर रहा है तो वो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, यदि आपके पास शक्ति है तो वो बोलने वाला का जीवा पकड़कर खींच कर काट लेना चाहिए है, शास्त्र कहता है। यदि आपको शक्ति है तो जान से उसको मार डालना चाहिए और स्वयं ही मर जाना चाहिए है। यदि वो वाणी में बोलता तो आपको जुक्ति आता तो उसको जुक्ति में परास्त करके चुप बनाना, चुप कर देना चाहिए, ये नहीं कर पाते तुरंत ही स्थान त्याग देना चाहिए। पार्वती ने पूरा तो सहन नहीं कर पाई, वो अपने जीवन त्याग दी तो अग्नि में प्रवेश कर गई। अब उससे शंकर जी देखे कि ये दूसरे वैष्णव की प्रति भी अपराध किया, सहन नहीं की, तब तो आए हैं सारे गुण आए, बस समाप्त कर दिए इसको, इसके सिर को काट के बस फेंक दिए। फिर वो ब्रह्मा जी से बोला कहा कि उन्होंने में गए तो चलो बड़े बकरी का सिर लाओ, उसका सिर तो जल चुका ले दी, यज्ञ अग्नि है बकरी का सर सिर लगा दिए। लेकिन ऐसे होने पर भी फिर भी जो निंदक बड़े सूक्ष्म भाव से रह जाता है बाहर, मैंने चलो ऐसे ही तो माफी मांग लिया, लेकिन फिर भी वही दक्ष फिर अपराध किया नारद जी के चरण में, फिर अपराध किया। नारद जी ने जब इसके लड़के को भक्त बना दिया, किसके, दक्ष प्रजापत के जो पराशर के जो भक्त थे, ने पुत्र थे सुबलाश्वर, 10,000 पुत्रों को भेजा था तपस्या करने के लिए, बोला जाओ से उठा ब्रह्मचर्य तपस्या करके आओ, फिर गृहस्थ जीवन में सृष्टि कार्य में आगे बढ़ाने के लिए संतान को उत्पन्न करना है। तो नारद जी ने उनके पास पहुंचे और उनके प्रचारक है, वो तो अपना प्रचार करने लगे, बोले कि अरे क्या कर रहे हो हैं, पिताजी ने भेजा तपस्या करने के लिए, बोला अरे क्या मिलेगा, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या जानते हो, भगवत धाम जाना, और मैं तुमको भक्ति सिखाता हूँ, भक्ति करो भगवत धाम चले जाओ, बस। नारद जी ने 2 मिनट में उनको सारे भक्त बना दिए, और वो पिताजी के पास वापस नहीं ऐसे भक्ति करके भगवत धाम चले गए। अब वो आए फिर बोलने के लिए तुम्हारा पुत्र लोग का, तुम्हारा पुत्रों का सारे कल्याण हुआ, नारद जी ने खुद ही आकर फिर खबर देते थे इसको सभी भगवत धाम चले गए, वैकुंठ प्राप्ति हो गया। हाँ पहले बार तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन पहले स्मरण करके शंकर जी का पर गुस्सा किया था तो कैसे भगत थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, और दूसरे बार फिर और 1,000 पुत्र को फिर भेजा तो पिछले मैंने नारद जी दोबारा पहुंच गए और फिर उनको भक्त बना दिए, बोले कि ब्रह्मचारी रहो और भक्ति के चले जाओ, भगवत धाम जाना जीवन का लक्ष्य है, जन्म होते संसार से मुक्त होना, क्यों फंसोगे इसमें, कीचड़ में क्यों फिर पैर धोगे, सब छोड़ो, अंतिम में सबको छोड़ना पड़ेगा। अमराज जी भक्त बना दिए, फिर गए, फिर दोबारा आके जो बल वो बोले तो वो हार संभाल नहीं पाया, फिर प्रतीत हो गया, किसके प्रति, नारद जी बोले तुझे कौन बोलता है, तू वैष्णव है, तू देख पिताजी का हृदय को नहीं जानता है, तू इतनी उद्धव बहुत कुछ गाली दे, नारद जी की बात में कहा कि तुझे अभिशाप देता हूँ, तेरे लिए कोई भी घरवार कहीं भी कुछ नहीं रहेगा, तू कहीं भी नहीं रह सकता स्थिर एक जगह पर। नारद जी ने मुस्कुराने लगे, बोले बहुत अच्छा हुआ, और ज्यादा घूमूंगा और ज्यादा प्रसार करूंगा तो इसलिए वैष्णव ऐसे ही मतलब और वैष्णव कभी क्रोधित नहीं होते हैं, गाली देता कुछ भी होता, जानते कि भगवान जो कुछ करते मंगल के लिए करते, इनको ये विश्वास रहता है, शरणागति के एक लक्षण है, भक्त के मन में पूर्ण विश्वास रहता कि भगवान जो कुछ करते हैं मंगल के लिए करते हैं। तो नारद जी से दक्ष के अभिशाप क्रोध में कोई फर्क नहीं पड़ा, देखिए ज्यादा घूमूंगा प्रचार करूं, जब थक जाऊंगा तो भगवान के धाम में चले जाऊंगा, धाम में अभिशाप काम नहीं करता है। नारद जी के सारे रहस्य पता है, इसलिए ब्रज में आते हैं, ब्रज में कुसुम सरोवर के आगे उनके आश्रम है नारद जी की, नारद कुटी, नारद आश्रम, नारद कुंड, यहाँ पर बैठकर नारद भक्ति सूत्र लिखे कौन नारद जी, इसलिए ऐसे ही क्रोधित दक्ष जी ने शंकर जी का प्रति भी क्रोध किया, फिर नारद जी पर प्रति भी क्रोध किया। तो यहाँ पर एक उदाहरण दी जा रही कि रूप हमने चैतन्य महाप्रभु की गड़ा में रूप कविराज और कृष्ण प्रिया ठाकुरानी, ये दोनों राधाकुंड में रहते थे, रूप कवि कृष्ण प्रिया ठाकुरानी जो है ये नरोत्तम दास ठाकुर के जो शिष्य थे गंगा नारायण चक्रवर्ती उनकी लड़की थी, महान भक्तिमती स्त्री थी। प्रत्येक दिन वो हरिदास ठाकुर की तरफ 2-3 लाख नाम लेती थी। दिन रात उनकी जीवा से हमेशा हरिनाम निकलते थे, शुद्ध नाम दिन रात पढ़ा करते। अपने आप हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बंद नहीं होती थी उसकी जीवा में, हमेशा हरे नाम लेती थी। और उसको सब लोग राधा कुंड का राधा कुंड ठाकुरानी कहकर तो पुकारते थे। इतनी महान भक्तिमती स्त्री है, सब जानते थे परम उत्तम अधिकारी वैष्णवी है। लेकिन वो राधा कुंड में और भी एक भक्त रहता था, रूप कविराज। वो भागवत की बहुत बड़ा मैंने प्रवक्ता था, भागवत के सारे आचार्यों की टीका पढ़ रखा था, सभी टीका पढ़ के पूरी इतनी सुंदर प्रवचन देता था। उसकी प्रवचन को सुनने से बहुत लोग आते थे, बहुत दूर दूर से लोग आते थे सुनने। विशेष में राधा कुंड की बाबा जी लोग वैष्णव जो समाज उसके पूरा बड़े खुश थे कि इतने सुंदर प्रवचन कह के भागवत कथा सुनाता है। लेकिन उसको ईर्ष्या था किसे, कृष्णप्रिया ठाकुरानी से। सोचता था कि यार ये व्रत ही है, वो तो ऐसे ही कोई भक्ति कर सकता है, इसको सारे प्रशंसा करते हैं, हैं इसके प्रशंसा भी करते थे लोग, तो उसको सहन नहीं होता। लेकिन कृष्णप्रिया ठाकुरानी तो बड़े स्वभाव के शांत दांत स्वभाव के थी। एक दिन ये प्रवचन भागवत लेकर प्रवचन करने के लिए जो वैशासन में बैठा, वो भी आ गए पीछे बैठने के लिए, बैठकर कथा सुनने के लिए बैठ गए। लेकिन उनके मुख से तो नाम उच्चारण हो चलती थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, तो इसको देख कर ही जब प्रवचन बंद करी, बोला ये बंद करो, ये क्या है, हाँ भागवत कक्षा में बैठकर आपने हरे कृष्ण कर रहा है, इसको बंद करो। वो सुने नहीं पत, वो तो आपने बलात्कार से वो बंद नहीं कर सकते, उनका अभ्यास है 24 घंटे वो हरिनाम कर, तो कह क्या बंद नहीं कर पाते हो, कक्षा बैठना तो बैठो, नहीं तो हरिना हरे कृष्ण जाओ कक्षा के बाहर, यहाँ नहीं बैठ सकते। तो उन्होंने कहे कि बड़े नम्रता से कहे कि प्रभु ये तो नाम के नाम प्रभु बलात्कार से मेरे जीवा से नृत्य कर रहे, मैं इनको बंद नहीं कर सकता, मैं आपके प्रवचन भी सुनता हूँ और मेरे जीवा से हरिनाम भी उच्चारण हो रहे हैं, तो मुझे आपके प्रवचन सुनने में कोई बाधा नहीं हो रहा है। नहीं इसको सुनकर तो और इतना क्रोधित हो गया, तुम बहुत बड़ा हो गया, इतनी बहुत गाली देने लगा है। लेकिन वही उसका लास्ट प्रवचन था, गाली दिया तो उसकी बात में और उसके मुख बंद हो गए, उसी मुख में कोड़ व्याधि होकर पूरा मुख बंद हो गया, वो कभी बोलने का शक्ति नहीं रहा। सारे राधा कुंड के जितने भी वैष्णव थे उसको बोले कि तुम वैष्णव अपराध किया है, उसके चरण में माफी मांग लो। लेकिन ये इतने घमंड था कि उसके पास गया नहीं माफी मांगने, एक स्त्री के पास जाओ माफी मांगने, हैं सभी वैष्णव इसको अन्याय विनय करने पर भी जाओ, तुम कृष्णप्रिया ठाकुरानी के चरण में अपराध किया है, तुम्हारा ये सब लक्षण दिखाई पड़ता, तुम शरीर का कांति घट गया है, तुम रुग्णा हो गए हो, कई रोग व्याधि ग्रस्त हो गए, कोढ़ व्याधि से तुम्हारा बोलना शक्ति भी बंद हो गया, तुम्हारे भागवत की प्रवचन करना और शक्ति नहीं है, लेकिन ये रहस्य है तुम अपराध क्या है, हम लोग कितने खुश होते थे तुम्हारे मुख से भागवत सुनकर, अभी हम सुनने के लिए हम लोग भी वंचित हो गए, कुछ करो जाओ माफी मांग लो। लेकिन वो मांगा नहीं, भाग गया, जो सारे वैष्णव कहे कि राधा कुंड छोड़ के बाद बंगाल चला गया, बंगाल में जाकर वहां पे आपने गुरु का चित्र देखने लगा, ये जो वैष्णव अपराध करता है फिर गुरु का चित्र देखेगा, गुरु के आपने जो उनके गुरु थे कृष्णचरण चक्रवर्ती उनकी दोस्त देखने लगा, फिर वहां से जो वैष्णव लोगों ने सब राधा कुंड की कथा भी सुने थे उसको फिर बोले कि तुम जाओ अपराध किया है, तुम कृष्णप्रिया ठाकुर से माफी मांग के आओ, वैसे तो फिर वहां भी वैष्णव लोग है, तो फिर वो छोड़ के उड़ीसा में चला गया। फिर ऐसे कहीं जाकर ऐसे मरा, मरने के बाद फिर भूत बना, और जो वैष्णव अपराध करता था फिर इनको जाकर पकड़ता था भूत बन के। वैसे अंतिम गति जो वैष्णव अपराध करके यदि माफी नहीं मांगता है तो उसकी अंतिम गति ऐसा ही होता है, उसका सारा जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए क्रोध्यंते, वैष्णव के क्रोधित होने से अपराध बन जाता है, वैष्णव प्रति क्रोधित होने से। और न हर्षम दर्शने, वैष्णव को देखकर हर्षित नहीं होने से। कोई वैष्णव आ रहा है आप देखे, कोई भक्त आ रहा है कम से कम तिलक कंठी धारण किया हुआ है, दोनों खुश होना चाहिए क्योंकि मैं एक महान वैष्णव हूं, आप पहचाने तो और भी खुश होना चाहिए। कोई मंदिर में कोई वैष्णव आ रहा है पधार रहा है, पर रास्ता में भी कहीं भी एक वैष्णव को देखे हैं तिलक कंठी धारण किया हुआ मुख में हरिनाम ले रहा है माला जप रहा है हरे कृष्ण बोल रहा है, पता हो खुश होना चाहिए, हर्षित हो जाना चाहिए, है बड़ा हर्षित होकर स्वागत करना चाहिए, यानी कि अरे आ रहा क्या है, कुछ पूछेगा क्या करेगा पता नहीं, अब चलो दूसरे रास्ते में चलो, अब कुछ पूछते हुआ तो आप सुनेंगे नहीं, वो पूछता होगा प्रभु जी नया आया उसको कुछ पता नहीं, कुछ पूछने चाहता है, तो आप मतलब इतनी व्यस्त है कि उसको सुनने के लिए तैयार नहीं, बात कुछ ना कुछ बांध कर इसको देखा ही नहीं, जिसे देखा नहीं फिर भाग गया साइड करके है। ऐसे वैष्णव को देखकर हर्षित नहीं होने से, प्रसन्न नहीं होने से भी अपराध बन जाता है। उदाहरण के एक उदाहरण हम देख सकते, सची माता को अद्वैताचार्य महान बैठे महाविष्णु के अवतार, और सची माता भी चैतन्य महाप्रभु के माता जी थे, चैतन्य महाप्रभु इनको भी नहीं क्षमा किया, किनको? अपने माँ को। जब महाप्रकाश लीला में गौरांग महाप्रभु स्वयं भगवत्ता का प्रकट करते हुए कि स्वयं कृष्ण है, स्वयं स्वरूप को दर्शन देते थे, सारे भक्तों को बुलाकर और सभी को कृष्ण प्रेम वितरण करते थे, शुद्ध कृष्ण प्रेम सबको वितरण करते थे, लेकिन अपनी माँ को नहीं बुलाए, तो श्रीवास ठाकुर कहते हैं क्या कर रहे हैं आप, अपनी माता जी को भी तो बुलाइए, वो विराज बेचारी दुखिनी है पीछे खड़े, आप उनको नहीं बुला रहे, सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं मुक्त हस्त में, लेकिन अपनी माँ को क्यों नहीं बुला रहे। महाप्रभु ने कहे कि नहीं, वैष्णव अपराधिनी है, वैष्णव अपराधिनी है, वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की योग्यता नहीं है। तो बोले ये कैसे, उसी की गर्भ से आप आए, सची गर्भ सिंधु से आप बाहर आए हो, सारे लोग जानते कि आप सची सुत हो, सची के तने, और आप बोल रहे आप माँ कैसे अपराध कर सकती, वैष्णव अपराधी सब सुनकर वैष्णव लोग आश्चर्यचकित हुए, ऐसे कभी हो ही नहीं सकता, माता सची कैसे अपराध कर सकती। लेकिन महाप्रभु ने कहे कि हाँ, ये अद्वैत किसके चरण में अपराध, न कहे कि अद्वैत के चरण में अपराध किया है, कैसे नहीं, वो जो मेरा बड़ा भाई महाप्रभु के जो बड़े भाई थे विश्वरूप महोत्सव गया, विश्वरूप जी ये अद्वैत आचार्य स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, उनके पास में कथा सुनने जाते थे, भागवत कथा सुनते थे, गीता कक्षा में बैठते थे, वो सुनते सुनते बाद में ये लोग जो माता पिता इनकी सची माता और जगन्नाथ मिश्र विश्वरूप के शादी का व्यवस्था करते थे, तो ये इसको विवाह करेंगे सुनकर विश्वरूप ने संन्यास लेकर घर द्वार के छोड़ के भाग गए। तो अभी सची माता ने सोचने लगे कि ये अद्वैत बूढ़ा मेरा लड़का को सिखा के सन्यासी बना दिया, इसको वैराग्य विद्या ऐसे वैराग्य ज्ञान सिखाते गीता पढ़ाते इसको सन्यासी बना दिया, इसलिए उसके मन में दुख हुई। किनके मन में? सची माता। वो अद्वैताचार्य को देखने से उनसे बातचीत नहीं करते थे, उनको देखने से खुश नहीं होते थे, अद्वैताचार्य यही जाते थे वो दूसरे रास्ते में चले जाते थे, उनकी तरफ देखती भी नहीं थे। कौन? सची माता। तो अद्वैताचार्य के ऊपर ये हर्षित न होने से, उनको देखकर प्रसन्न नहीं होने के कारण महाप्रभु ने कहे कि तुम अपराधी है, अपराधी नहीं है। कौन? सची माता। तो इसलिए बात को सुनकर जब महाप्रभु ने कही कि अद्वैताचार्य के चरण में मेरी माँ अपराधी है, तो अद्वैताचार्य बोले नहीं नहीं, मेरे चरण में सची माता का अपराध, ये कैसे संभव है, कहकर मूर्छित हो गए पूरे। कौन? मूर्छित होकर गिर पड़े। तभी सब लोग वैष्णव ने निर्देशन दिए, महाप्रभु ने निर्देशन प्राप्त कर सची माता तुरंत जाकर उनको प्रणाम किया और उनके चरण स्पर्श करके सिर में उनके चरण धूलि धारण किए। महाप्रभु बड़े खुश हुए, बोले कि अभी मार्जन हो गया, अपराध मार्जन हो गया। इसलिए वैष्णव को देखकर यदि खुश नहीं होते हमें यदि खुश नहीं होते, कुछ ना कुछ ऐसे ही दुखी हो जाता, कुछ ना कुछ ऐसे भावना हमारे मन में गलत भावना आता है, तो फिर हम अपराधी बन जाते। वैष्णव को देखकर प्रसन्न होना चाहिए। महाप्रभु ने अपने माँ को भी खिवा नहीं दिया, कहे कि नहीं ये कृष्ण प्रेम की अधिकारिणी नहीं है, क्योंकि अद्वैत को देखने से फर्षित नहीं होती है, इसके मन में सबसे भावना रहती कि मेरे लड़का को ये संन्यास बना दिया है, और ये आपने देख अद्वैत से थोड़ा दूर रहना चाहता, देखने से भाग जाती है, ऐसे दूसरे दर्शन चले जाती है। कभी कभी गंगा में पानी लाने जाते तो दूसरे स्त्रियों के पास भी बोलती है, ये अद्वैत बूढ़ा ने मेरे बड़ा लड़का को क्या बना दिया, सन्यासी बनाकर घर से निकला दिया, तो इसलिए अपराध बने। तो इसलिए कभी वैष्णव को देखकर सबसे प्रसन्न होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। वैष्णव है देखें तो आलिंगन अपने जैसे उनके अधिकार के आधार पर उनको सम्मानित करना चाहिए। इसलिए आगे कहती पतंती नहीं नहीं सॉरी हाँ, तो इस प्रकार यदि हर्षित नहीं होते, बाकी वैष्णव को देखकर उनके अधिकार के आधार पर उनको सम्मानित नहीं करते, तो भी अपराध बन जाता है। पूरा श्लोक हंती निंदंती द्वेष्टि हंती निंदंती वही द्वेष्टी वैष्णवानंग न अभिनंदंती वैष्णव को देखकर सम्मानित नहीं करने से अपराध होता है। हैं अवश्य सभी प्रकार के वैष्णव को एक जैसे सम्मानित नहीं किया जाता, लेकिन फिर इसलिए रूप गोस्वामी ने अपने श्लोक कहे हैं पंचम श्लोक उपदेशामृत में, उन्होंने शिक्षा दिया कैसे वैष्णव को सम्मान करना है। कृष्णति जस्य गिरितं मनसा अन्तर्येत यदि कोई व्यक्ति कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र गा रहा है, जप रहा है, देख रहे हो, चाहे वो रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा है या कुछ कमियां उसके पास है, लेकिन फिर भी क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र जप रहा है तो इसीलिए उसको मन से आदर देना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि एक बार हजार मुखे सुनी कृष्ण नाम सही तो वैष्णव तार कर सम्मान है। एक बार चैतन्य महाप्रभु को पूछे कुलीन ग्राम अर्थात नवदीप के निवासी पूछे कि महाप्रभु पुरी में आए थे, पुरांग महाप्रभु पूछे कि महाप्रभु वैष्णव कौन है, वैष्णव अपराध से बचने के लिए तो हमेशा कहा जाता है लेकिन वैष्णव है कौन, कैसे वैष्णव को पहचानेंगे कौन वैष्णव है वैष्णव। तो महाप्रभु ने कहे कि देखो एक बार जार मुखे सुनी कृष्ण नाम सही तो वैष्णव करो ताहर सम्मान। यदि किसी के मुख से एक बार भी हरे कृष्ण बोलना सुनते हो फिर भी उसको मन में आदर दो, हाथ जोड़ो, उसको भी आप हरे कृष्ण कहकर हाथ जोड़ लेना चाहिए, सम्मान देना चाहिए। लेकिन वो डाउट नहीं क्लियर नहीं हुआ, दूसरे साल फिर आए फिर सेम प्रश्न पूछे कि महाप्रभु डाउट क्लियर नहीं हुआ, वैष्णव कौन है और थोड़ा क्लियर कीजिए। तो महाप्रभु ने कहे कि निरंतर कृष्णनाम जहार बदने सही तो वैष्णव है सेवा तहार चरण। बोले प्रकृत में जो निरंतर हमेशा हरे कृष्ण 24 घंटे के मैंने देख रहे के सब हमेशा कीर्तन कर रहा है, नाम जप रहा है, वो वैष्णव है। ये कौन किस प्रकार वैष्णव है, ये मध्यम वैष्णव है, है? उसको मैंने हरे कृष्ण जप रहा सब हमेशा तो ये फिर और उन्नत वैष्णव मध्यम वैष्णव है। लेकिन फिर तीसरे साल आए वो लोग, फिर पूछा महाप्रभु और भी डाउट रह गया और थोड़ा क्लियर कीजिए इसको वैष्णव कौन है। तो महाप्रभु ने फिर तीसरी बार कहे हैं जहारे देखिले मुखे आयसे कृष्णा सही तो जाना हो तुम्हें वैष्णव प्रधान, उत्तम वैष्णव वही है, प्रधान वैष्णव वही है जिसकी उपस्थिति दूसरों को भक्त बना देता है। हैं नारद कहीं गए तो उनकी उपस्थिति दूसरों को, मुर्गारी हो कि दशरथ कोई भी हो वो भक्त बन ही जाएगा, वो उनकी सामने आ गया तो भक्त बनेगा। प्रभुपाद जी गए तो पाश्चात्य जगत में यही भी सब आ गए, सब इतनी मलेच्छ जवन सब सभी भक्त बन गए हैं। इसलिए उत्तम वैष्णव वही है जिनको देखने से ही बलात्कार से हमारे मुख में कृष्ण नाम उच्चारण हो जाता है, जिनकी उपस्थिति में ही हमको भक्त बना देता है। तो इस प्रकार तीनों प्रकार की वैष्णव को सम्मान करने की भी शुभ गोस्वामी में कहेगी, जो कि केवल हरे कृष्ण नाम उच्चारण कर रहा है मन सान्द्रिय तो इसको मन में आदर दो, हाथ जोड़ लो, जो दीक्षा ले चुका है पंचरात्र की विधि से सदगुरु स्वीकार किया है, भागवत पढ़ रहा है, सत्ता विग्रह की सेवा कर रहा है, पूर्ण सभी रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा है, तो उसको पंचांग प्रणाम करो। आगे बढ़कर जो शुश्रूषया भजन विज्ञान अन्य निंदा आदि शून्य हृदय ईक्षित संगलब्ध, जो निंदा आदि शून्य है, किसकी चुगली निंदा नहीं करने वाला है, हमेशा कृष्ण भजन में रत है, भगवान के प्रचार में लगा हुआ है, गुरु पूर्ण समर्पित कृष्ण के चरण में है, जिसे उत्तम वैष्णव उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इसी प्रकार वैष्णव की शुश्रूषा सेवा उनकी सब कुछ करना चाहिए, कैसे उत्तम वैष्णव की निंदा आदि शून्य हृदय ईप्सिता संगलब्ध, ऐसे ही वैष्णव के संग करने से तो फायदा होता है। जैसे काल आलोचना कहते भक्त पद धूलि भक्त पद जल भक्त भुंक्त अवशेष तीन महाबल, ये किस प्रकार वैष्णव से होना चाहिए, उत्तम अधिकारी वैष्णव तभी हमको लाभ मिलेगा। उत्तम वैष्णव से चरण धूलि और उनके चरणामित बा उनके जुटन खाने से ये फायदा आपको प्राप्त होता है, परमहंस वैष्णव की कृपा प्राप्त होने से आपको कृष्ण प्रेम मिल जाता है। तो इसलिए ये सब छह प्रक्रिया से अपराध होता है, वैष्णव को देखने से इसलिए आदर देना चाहिए, ये छह से बचना चाहिए, हंती निंदंती द्वेष्टि द्वेष करने से वैष्णव न अभिनंदंती क्रुध्यंती जानती न हर्षम, ये छह अपराध छह प्रकार के अपराध करने से हमें बचकर रहना चाहिए, नहीं तो वैष्णव अपराधी को कोई भी संसार में बता नहीं सकता है। कभी कभी अज्ञान से भी वैष्णव अपराध करते, जानबूझकर नहीं करते, लेकिन अज्ञान से भी वैष्णव अपराध हो जाता है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया भी भोगना पड़ता है, नहीं कि अज्ञान से हो गया हम कुछ थोड़ी जानबूझ थोड़ी की है। एक उदाहरण दी जाती रूप गोस्वामी कृष्णदास का, नहीं कृष्णदास एक लंगड़ा था उसके नाम था कृष्णदास, वो भी हरे कृष्ण बल जपता था लेकिन इतने उन्नत वैष्णव नहीं था कि रूप गोस्वामी जैसे थे। रूप गोस्वामी जैसे कोई शुद्ध नाम लेना चाहता है प्रारंभ करता है तो भगवान के नाम से सब कुछ है, नाम में ही भगवान के सब छुपा हुआ, क्या क्या नाम में ही रूप छुपा हुआ है, नाम इसके बाद रूप गुण और लीलाएं हम जब अपराध शून्य होकर नाम लेना प्रारंभ करते हैं तो पहले उनके रूप प्रकट होता है, किनके? भगवान के। अब जब कृष्ण नाम ले रहे हो, कृष्ण के रूप प्रकट होगा, आप हरे कृष्ण बोलते ही भगवान के स्वरूप आपके सामने प्रकट होगा, जो शुद्ध नाम लेने से। फिर आस्ते और उन्नत होने से इनकी गुणों, भगवान के सारे गुणों 64 गुण ने जो गुणों से वो आचर लोग नहीं, जो गुण आपको सामने आ जाए, भगवान कितनी सुंदर है, भगवान की महानता, सारे गुण भगवान सारे गुणों आपके सामने प्रकट होंगे। आस्ते आस्ते भगवान की लीलाएं प्रकट होंगे, अंतरंग लीलाएं हैं गोपियों के साथ में, राधा रानी के साथ में, ग्वाल वाल जो जिस रस में है, तो लीलाएं सब अपने प्रकट होंगे। रूप गोस्वामी उत्तम कोटि के भक्त थे, इसलिए वो जब बैठकर टेर कदम में अपने लेते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो उनके सामने क्या प्रकट होते थे? भगवान की लीलाएं प्रकट होते थे। लीला प्रकट होते थे तो बड़े भाव में बैठकर जपते थे, तो वो लीला देख रहे थे कि राधारानी ने बैठ के बैठकर आप श्रृंगार कैसे विन्यास कर रही है, सखी मंजरी लोग ने कैसे विन्यास कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण से पीछे से आए, पीछे से आकर उन्होंने भी वो मंजरी के साथ में मिलकर वो भी कैसे विन्यास करने में लग गए। कौन? उस बात राधारानी को पता नहीं थी कृष्ण भी पीछे हैं। तो एक मंजरी ने सामने लेकर एक बड़ा दर्पण रख दी, तब राधारानी ने आपने देखा कि पीछे अन्य सखियों के साथ में भी कुछ किसको देखे? कृष्ण को देखे। तो इस दृश्य को देखकर इनको बड़ा आया, किनको? रूप गोस्वामी को। ऐसा ही भक्ति रत्नाकर में ऐसे ही नरहरि सरकार लिखते हैं, लेकिन कोई कोई घटना को और दूसरे प्रकार कहते कि नहीं नहीं वो रूप गोस्वामी ने ये देखा कि वो राधा रानी ने फूल तोड़ रही थी, कृष्ण के लिए माला बनाई, फूल तोड़ने जा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने पहले से जाकर उसी डाल में बैठे हुए थे ऊपर, देखे कि राधा रानी हाथ बढ़ा रही, फूल पूरा हाथ नहीं आ रहा, तो भगवान ने आस्ते से ही डाल को नीचे कर दिए। अब फूल तोड़ने जो लग गई राधा रानी दोनों हाथ में, तो वो डाल से ऊपर चले गए, वो डाल उठ गया ऊपर, तो राधा रानी भी डाल किसे ऊपर ऐसे झूलते हुए उठ गई ऊपर। तो उसी को देखकर इनको हंसी आया, किनको? तो रूप गोस्वामी से दिव्य लड़ा, राधा कृष्ण को दिव्य लड़ा को देखकर हंस रहे थे, लेकिन उसी समय लंगड़ा जा रहा है वो जो वैष्णव का जा रहा था कृष्णदास, उसके एक पैर में थोड़ा चक्कम था, ऐसे ही चलता था थोड़ा हिलते हुए, तो ये हंस रहा था, वो सोच रहा कि रूप गोस्वामी मुझे देखकर हंस रहे। सारा दुनिया रूप गोस्वामी को इतनी महान वैष्णव कहता है, परमंश स्थिति में गोस्वामी है, और मैं लंगड़ा हूं तो मुझे देखकर हंसने लगे, उसको दुख, उसके मन में दुख है, वो रोने लगा, रोते रोते अपने कुटिया में वापस चले गया, वहां जाकर भी रोना लगा। ओ जो दुखी हो गया तो रूप गोस्वामी को लीला दर्शन बंद हो गया। वो लीला देखने के वो क्या हुआ रूप गोस्वामी बड़ा हठात आश्चर्यचकित हो गया, मेरी लीला दर्शन बंद हो गया, और कितनी बार भी हरे कृष्ण जपने पर भी कुछ भी और भगवान के रूप गुण लीला कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। बड़े आश्चर्यचकित रहे हैं, अपने बड़े भाई आए सनातन को मिलने के लिए, उनको पूछे क्या रहस्य, सनातन कहे कि तुम कहीं ना कहीं वैष्णव अपराध किया, इसका कोई दूसरे कारण नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं अपराध किए हो। तो बोले कि मैं तो ऐसे जान बुझी कहीं नहीं, कि ना जान से क्या अज्ञान से नहीं किया, तो कहीं नहीं सॉरी ज्ञान से नहीं किया तो अज्ञान से हुआ है, तो क्या प्रतिकार करेंगे, बड़े इंटेलिजेंट थे कौन? सनातन गोस्वामी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि राजमंत्री सनातन बुद्धि बृहस्पति, बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। तो ना कहे कि तुम एक काम करो, एक भोज बनाओ, एक फिस्ट बनाओ, आसपास में जितने भी वैष्णव है सबको बुलाओ भोजन के लिए, जिसके चरण में तुम्हारा अपराध होगा वो खाने के लिए नहीं आएगा, जरूर वो कुछ कंप्लेन करेगा, तो इसलिए पता लग जाएगा कहाँ अपराध है। अब बड़े भाई के निर्देशन में रूप गोस्वामी ने भोज के आयोजन किए, भोजन बने, फिस्ट हो गया, सबको बोला है, लेकिन ये इसके पास में जब ये देखे मार्क कि ये आया नहीं आया, कौन? कृष्णदास। तो सनातन कहे कि वही तुम्हारा अपराध है, जाओ तो उसको तुम पर्सनली जाकर बोला के लेके आओ। तो रूप गोस्वामी गए और रूप गोस्वामी को देखकर वो पूरा फिर रोने लगा, मैं नहीं जाऊंगा तो आपका फिस्ट खाने, आपको सारा दुनिया बड़ा वैष्णव कहते महान आचार्य गोस्वामी, लेकिन मैं लंगड़ा हूं तो भगवान ने मुझे ऐसे किया, तो आपने मुझे देखकर भी हंसी आ, उसने हंस रहे हाथ, मैंने बड़े दुखी और रोने लगा। तो रूप गोस्वामी बढ़िया सतर्क समझ गए कहाँ से अपराध है, इसको पकड़कर बहुत समझाए, अरे मैंने आपको देखकर नहीं हंसा, मैं पूरे इसको पूरा कन्विंस कराया कि मैं ऐसे भगवान की लड़ा देखकर मेरी मुख से हंसी आ रहा था, मैंने आपको देखकर नहीं हंसा। तो उसको जो पता लगा तो वो भी सोचारे में गलत सोचा, और उपसंगी जैसे महान वैष्णव के बारे में मेरे मन में गलत चिंतन आया, वो भी दुखी हो गए, फिर दोनों बांछा करते तो परस्पर को किए आलिंगन किए, अपराध से मुक्त हो गए। इसलिए किसी ना किसी रूप से कहीं भी ये ज्ञान से अज्ञान से कभी भी अपराध होता है, लेकिन ज्ञान से हो या अज्ञान से हो वैष्णव अपराध का प्रतिक्रिया भोगना पड़ेगा, इसे बड़े सतर्क रहना चाहिए। इसीलिए कहते कि तृणादपि सुनिचेन करोरोपि सहिष्णा अमानिना मान देना कीर्तनिया सदाहरी। दूसरे उदाहरण दिया कि राहुगण और जड़ भरत है, जड़ भरत जो महापरमहंस वैष्णव, उनको पता नहीं था किसको, राजा राहुगण को पता नहीं था, इसलिए पालकी ढोने में लगा दिए थे। उनका जो नौकर दूसरे लोगों से एक बीमार पड़ गया था, इसलिए इसको ढूंढ के वो तो गार्डन में बैठे थे, पकड़ के ले आए, बड़े बहु हाथा करता है तो इसी पानी की पकड़ गया है, इनको लगा दिए थे। लेकिन बाप में पता चला किनको, महाराज राहुगण, क्योंकि ये चलते थे तो चिट्टी भी देखते थे रास्ते में, कोई चिट्टी चलते चिट्टी का ऊपर पैर भी जैसे ना आ जाए, कोई प्राणी मात्र किसी को कष्ट जैसे ना हो। चिट्टी को बच्चा बच्चे की चल रहे तो हाथ ऐसे पैर इधर उधर पैर होता था, तो वो पलकी भी ढूंढता था इधर उधर, और राजा बड़ा परेशान होता था बैठकर उधर, बोले कौन क्यों ऐसा कर रहा है, तो डांटने लगे वो तीनों तीनों जो ढोने वाले थे। दूसरे कहे कि यही कर रहा है, जो नया आया नया नहीं आया यही कर रहा है, तो राजा ने फिर उसको फटकार लेने लगे। व्यंग बच्चन पहले कहे फिर बाद में बहुत डांटे, कोई जानता नहीं मैं कौन हूं, जमराज के समान दर्द देने वाला हूं, अभी तुझे हैं इतनी मारूंगा चाबुक कहें और इतनी पिटाई करूंगा, ये सब बहुत कुछ धमकी दी। लेकिन वो कहे वो तो मुस्कुरा रहे थे, बोले मैं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं। तो जो वो फिलोसफी कहने लगे तो फिर राजा को पता चला ये साधारण ढोने वाला नहीं है, तो भी बोला कि रखो पानी उत्तर के, फिर इनको प्रणाम किया है, बोला कि आप कौन है महात्मा, आपको आप दिव्य ज्ञान आत्मज्ञान, जिस आत्मज्ञान लेने के लिए मैं कपिलमुनि के आश्रम में जा रहा हूं, तो वही आत्मज्ञान मैं लग रहा कि वही कपिलमुनि साक्षात इसी रूप में आकर मेरे पास मुझे परीक्षा ले रहे हैं। और कई आपने कहने लगा, तो जड़भरत थे उसको परिचय दिए, उसको दिव्य ज्ञान दिए, माफी मांगा, फिर उसके वैष्णव अपराध से मुक्त हो गया। कभी कभी अज्ञान से हमेशा किसी वैष्णव चरण में अपराध कर लेते हैं, लेकिन जब भी हमारे पास में कोई अपराध होता तो उसकी माफी मांग लेना चाहिए, यानी कि अज्ञान से हो गया, मैं थोड़ी जानबूझ करके आया, जानकर करो या अज्ञान से करो, प्रतिक्रिया भोगना पड़ेगा, इसलिए उसकी प्रतिकार भी करना पड़ेगा, माफी मांग लेना पड़ेगा, नहीं तो वैष्णव अपराधी कभी भी भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता है, शुद्ध नाम नहीं ले पाएगा, है इसकी कोई उपाय नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि भगवान की इच्छा से किसी महान वैष्णव ऐसे कार्य करते हैं, वो दिखाई पड़ता है कि बाहर में जैसे अपराध, लेकिन प्रकृति में अपराध नहीं होता है। एक उदाहरण दिया गया यहाँ पर महाराज चित्रकेतु, शंकर जी के साथ है महाराज चित्रकेतु, सभा में देवता और ऋषि मुनियों की सभा में बैठकर ज्ञान वैराग्य की शिक्षा दे रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, लेकिन अपने पत्नी को गोद में लेकर बैठे थे, किनको, पार्वती बैठे हुए थे लेकिन उनके साथ नहीं। शंकर जी निर्विकार है, लेकिन वो ज्ञान वैराग्य के संसार में वैराग्य कैसे और ये प्रवचन दे रहे थे, तो चित्रकेतु महाराज वो भी महान संकर्षण की भक्त थे, भगवान का साक्षात्कार कर चुके थे, संकर्षण दिव्य विमान उनको संकर्षण भगवान ने ही प्रदान किए थे, उसमें बैठकर कहीं भी जा सकते थे। तो आते थे तो वो देखकर ये दृश्य को आकाश से बड़े उनको हसी, एक प्रकार के तो शंकर जी की महानता को कहते थे, वो निंदा नहीं करने थे, उनकी माइंड में ये भावना नहीं थी कि निंदा करने का, वो भी संकर्षण के भक्त थे और शंकर जी भी संकर्षण के ही उनके इष्ट है, तो इसलिए उन्होंने क्या अद्भुत दृश्य दिख रहा हूं है, अपने पत्नी को गोद में लेकर बैठने वाला जो व्यक्ति है वो फिर ज्ञान वैराग्य की शिक्षा दे रहा है। शंकर जी तो उनके कहने का उद्देश्य को समझ के वो हंस दिए, वो कुछ नहीं बोले, इन पार्वती को सहन नहीं हुआ, पार्वती कहे कि मूर्ख तूने शनि को सम्मान से करना रुक कर दिया, अभिशाप देता हूं, राक्षस की जोनी में चले जा। लेकिन महाराज चित्रकेतु इसको सुने और बड़ा शांत दांत भाव से उतरे अपने विमान से और माता जी के कहकर संबोधन किए, पार्वती को प्रणाम किए, चरण स्पर्श करके उनसे कहे कि आप माता जी आपकी आदेश शिरोधार्य है। लेकिन क्रोधित नहीं हुए कि दूसरे अभिशाप नहीं दिए, वो चाहते थे भी वो भी अभिशाप दे सकते थे पार्वती को, लेकिन वो नहीं। लेकिन तभी शंकर जी ने कहे तूने पहुंचा, मैं जब कुछ नहीं करा, तुम देखो कौन बड़ा है, तुम बड़ा है कि तुमको वैष्णवी देवी सारा दुनिया कहता है, लेकिन तुम बड़ा है कि चित्रकेतु बड़ा है, विश्व समझ लो है, नारायण अपरा सर्वे नवभ्यति कश्चन स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्य अर्थदर्शी, ये नारायण के भक्त है, भगवान के भक्त कैसे होते देखो साक्षात, तुमने इनको अभिशाप दिया, वो चाहता तुमको भी अभिशाप दे सकते, लेकिन नहीं सहन कर लिया, और तुमको माता जी को कर संबोधन, तुम्हारा चरण स्पर्श करके चले गए, तुम्हारा आदेश को देख शिरोधार्य कर लिया, लेकिन वो प्रकृति में मेरे चरण में अपराध नहीं किया था, वो तो मेरी गुणों को और देखकर आश्चर्यचकित होकर सबके पास कहता, देखो ऐसे ही गुण किसी दूसरे के पास नहीं हो सकता, केवल शंकर जी के पास में ऐसे ही दिखाई पड़ता है व्यतिक्रम है। वो किसी भी स्थिति में परम परमहंस स्थिति में रहते हैं, आप महान वैष्णव वैष्णवान यथा शंभू स्थिति में रहते हैं। मेरी महानता को गाया रहा था लेकिन तुम इसको गलत समझा। इसी प्रकार कभी कभी हम देखते किसी वैष्णव को गलत समझ लेते हैं। और इसमें आचार्य लोग कहते प्रकृति में भगवान की इच्छा था इसको वापस जल्दी जल्दी भगवत धाम को ले आने के लिए, किनको, महाराज चित्रकृति। अब पार्वती नहीं बनते थे, अभिशाप नहीं देते, भूतासुर बनते थे, बने फिर वो मरे तभी फिर गए भगवत धाम, बहुत जल्दी चला गए। नहीं तो वो चित्रकृति के रूप में गंधर्व ध्वनि में रहता था, फिर कई करोड़ साल जाता था इनको फिर भोग में। कभी कभी भगवान ने ऐसे करते हैं। तो ये वैष्णव अपराध बाहर से दिखाई पड़ता लेकिन वैष्णव अपराध नहीं होता है। तो इसी प्रकार जय विजय की कहानी, जय विजय कथा। तो ये जय विजय को द्वारपाल थे और चार कुमार जाते तो रोक दिए इनको, लेकिन इसके पीछे भी किनकी इच्छा था, भगवान की इच्छा था। भगवान चाहते थे कि ये अभिशाप प्राप्त करें तो फिर ये राक्षस बन के जाएंगे हिरण्यकश्यप के, तो फिर मैं आऊंगा थोड़ा लड़ा करूंगा इनके साथ में। किसी बद्ध जीव के साथ में भगवान लड़ा नहीं करते हैं। हमें कुश्ती कसरत करने की इच्छा होता तो भगवान को भी कभी कभी खेलने का, कुश्ती कसरत करने का इच्छा होता है, तो किसके साथ करेंगे, ये बद्ध जीव के इनके समक्ष नहीं होते। इसलिए अपने पार्षदों को वहां से भेजते हैं। इसलिए जब ये भगवान स्वयं आए तो ये कुमार अभिशाप दे दिए, भगवान स्वयं दर्जे पर आ गए, क्योंकि ये क्रोधित होकर अभिशाप दिए इसलिए इनको अंदर जाने का अधिकार नहीं था, किनको, कुमारों को। मतलब भगवान आए दर्जे के सामने, बैकुंठ के दर्जे के बाहर आए, आकर जो ब्राह्मण को कि अच्छे वो उनको, लेकिन भगवान की देखे कि जय विजय कितनी स्नेह है, ये देखकर कुमार लोगों ने कहे कि प्रभु हम हमारा अभिशाप माफी फिर वापस कर लेते हैं। भगवान कहे कि नहीं नहीं, ये मेरा इच्छा से ही हुआ है, तुम लोग का दोष नहीं है, वो मैं मुझे इनको लीला में भाग लेना इनके साथ, इसलिए भगवान ने फिर आए। भगवान आकर फिर जय विजय मैंने नृसिंह अवतार में आए, नहीं पहले का किसी अवतार बराह रूप में, फिर नृसिंह के रूप में आए, तीन बार आए भगवान ने, रावण कुंभकर्ण, फिर वो रामचंद्र के, फिर शिशुपाल दंतवक्र, फिर कृष्ण रूप में आए। तो भगवान ने आकर उनके साथ में लीलाओं को प्रकट किया। तो इस प्रकार कभी कभी देखते हैं कि बाहर से वैष्णव अपराध जैसे, लेकिन वैष्णव अपराध नहीं होता है। ये जितने प्रकार के वैष्णव अपराध हम देखे हैं, ये सबसे बड़ा वैष्णव अपराध माना जाता है किसको, तीसरा अपराध जैसे नाम अपराध से है, गुरु की चरण में अपराध करना, गुरु अवज्ञा, इससे बड़ा वैष्णव अपराध और कुछ नहीं है। अन्य कहीं कुछ ऐसे अपराध करके हम यदि सदगुरु की चरण में शरणागत होकर रहते हैं, एक उत्तम वैष्णव जिसको आश्रय देकर रखता है वो सुरक्षित रहता कई स्थान पर, और गुरु इसको निर्देशन देकर फिर सुधार देते हैं, कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहा है बार बार इसको सिखाते फिर आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन ये गुरु की चरण को यदि अपराध करेगा, इनकी बात को त्यागेगा, फिर वो उसको कोई नहीं रखेगा। इसकी उदाहरण यहाँ पर दी गई है, रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी के दो शिष्य थे, रामचंद्रपुरी और एक थे ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी गुरु की सेवा करते थे, अंत समय में खिलचरा गोपीनाथ के पास में वो लीला संवरण कर रहे थे। माधवेंद्रपुरी इनको कोई हो शोध बोध नहीं था, कभी खाते थे, कभी सोते थे, कभी मलमूत्र त्याग करते थे, कुछ चेतना भी नहीं रहता था बाह्य चेतना। तीन रात कृष्ण की विरह में विप्रलम्ब भाव से फुकारते थे, दीन दयाल नाथ ये मथुरा नाथ कदा वलक से हृदय तदा लोक कातरम दैत भ्राम्यति किं करो मैं हम। हे दीननाथ, हे मथुरानाथ, आप हे कहाँ कहाँ है, मैं आपको प्राप्त नहीं कर पाया, मैं अभागा हूँ, दुर्भागा हूँ, ऐसे आपने को धिकारते हुए विप्रलम्ब भाव से पुकारते थे भगवान को। इनको कुछ शोध बोध नहीं रहता था, स्थिति में भी ईश्वरपुरी उनके पास में रहकर इनकी सेवा करते थे, इनके खान पान इनके मल मूत्र अपने हाथ से ही सफा करते थे। और माधवेंद्रपुरी बड़े प्रसन्न हुए, ईश्वरपुरी को आशीर्वाद दिए, तुमको भगवान श्री कृष्ण के चरण में प्रेम धन प्राप्त हो को प्रेम धन, कृष्ण तुम्हारा हो को प्रेम धन, भगवान श्री कृष्ण के चरण में तुमको प्रेम भक्ति मिल जाए, प्रेम धन प्राप्त हो जाए। इसलिए ईश्वरपुरी महान धन्य हो गए, गुरु की सेवा किए, गुरु आशीर्वाद की बल पर भगवान ने उनके फिर शिष्य बन गए। गुरु की ऐसे सेवा किए, भगवान ने सोचे कि यही व्यक्ति मेरा गुरु बनने के लिए योग्य है, गौरांग महाप्रभु, इसलिए उनको गुरु रूप में स्वीकार किया, किनको, ईश्वरपुरी को। लेकिन उनकी और एक शिष्य था माधवेंद्रपुरी, नहीं सॉरी माधवेंद्रपुरी, दूसरे शिष्य था रामचंद्रपुरी। ये कहाँ से घूम घाम के साथ तारा सारी मायावादी मिश्रण कर करके आगे पहुंचा और देखा कि ये ऐसे ही रो रहे हैं, ऐसे ही मैंने दिन रात ठुकार रहे हैं भगवान को, रहा है तो वो कहा कि ये क्या है, रोना ये करना ये पता नहीं, तो भावुक का काम है, है? आप सन्यासी हो ऐसा रोना पोना क्या कर रहे हो? गुरु को उपदेश देने लगा, गुरु के ऊपर गुरु पुणिया दिखाने लगा। बोला कि ये सब क्या, आपको गंभीर रहना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ब्रह्म में ध्यान होना, ये सब क्या है, रोना ये करना, भावुक जैसे जैसे प्रकाशानंद सरस्वती क्रिटिसाइज करता था किन को, महाप्रभु को। तो एक निंदा करने लगा तो महा ने देखे माधवेंद्र की तो देखे कहे कि तुम्हारे गेट आउट, तुम्हारा मुख भी देखना नहीं चाहता हूं मैं, तुम्हारा मुख देखकर जो मेरे शरीर त्यागेगा मेरे कृष्ण के चरण प्राप्त नहीं होगा, चले जाओ तुम यहां से। इसको फटकारा दे, भागा दी वहां से, गुरु चरण में अपराध किया, गुरु जी गुरु इसको त्याग दे। तो वहां से आते आते पुरी पहुंचा, जगन्नाथपुरी से फिर आकर देखा गौरांग महाप्रभु है, अब वैष्णव के संग वैष्णव लोग को देखा और आकर पहुंच गया। कह कि अरे आप लोग ये लोग सब देखे कि महाप्रभु ने देखे कि ये ईश्वरपुरी के गठबर्धर है, मेरे गुरु की गुरु भाई है, तो देखकर बड़ा प्रसन्न होकर उनको स्वागत किए, प्रणाम किए, लेकिन इसका तो मिस्टेक देखना क्या स्वभाव है। तो कहा कि ठीक है, उन्होंने बोले कि आप बैठिए, आपके नहीं नहीं आप लोग सब बैठिए, प्रसाद आप लोग को खिला, आप बैठे हो, बड़ा ऐसे व्यवहार के नहीं नहीं मैं तो फिर सभी लोग बैठे ये सर्विस करने लगे। लेकिन सर्विस करते थे तो एक एक पत्ता में पांच पांच आदमी के खाना, वो मना करता था, इतने नहीं नहीं खाओ खाओ, महाप्रसाद है, जगन्नाथ महाप्रसाद है, महाप्रसाद है, प्रभु का साक्षात दर्शन, प्रसाद का अर्थात प्रभु का साक्षात दर्शन, कलयुग में साक्षात दर्शन प्रसाद नहीं होता, खाओ। खाते बेचारे वो बड़ा मुश्किल से खा रहे थे, लेकिन अंत में देव खा के लोग हाथ हाथ धोले, बोले कि अच्छा इतने इतने खाते हो, मैं सुना था चैतन्य के जो गढ़ है चैतन्य का चले हैं बहुत बहुत खाते, प्रैक्टिकल देखा आज यहां तक खाते हो, अब तुम लोग इंद्रिय संयम कैसे करोगे, भक्ति कैसा तुम लोग का होता है, हैं? उनको बहुत फिर डांटने लगा, ये स्वभाव है उसके, वैष्णव अपराध करने लगा बिना कारण से उनको डांटा। चैतन्य महाप्रभु के रहने के स्थान पर गया और महाप्रभु के पास कोई दोष नहीं देखा, देख लगे चिट्ठी कैसे चल रही, जो दीवार के सहारा में चिट्ठी चल रही, तो बोला कि अरे चिट्ठी कैसे आ गई था आपके कमरा में, चिट्ठी इधर घूम रहे माने आ कहीं स्वीट होगा मिठाई होगा, नहीं तो चिट्ठी क्यों थी भटक रहे हैं, सन्यासी होकर मिठाई खाते हो, शक्कर खाते हो, है इनको डांटा किनको। चैतन्य महाप्रभु ने कुछ नहीं बोले, धन्यता से बैठे बोले कि जाए महाराज इतनी इतनी खाते हो, फास्ट देखा तो मैं इतनी इतनी दस दस ने पांच पांच आदमी का खाना, एक एक आदमी खाते हो और सन्यासी होकर शक्कर भी खाते हो, इससे सारे चिट्ठियां इधर भटक रहे और घंटे लगे। महाप्रभु ने अपने खाना भी कमा दिए, जितने खाते थे एक चौथाई कर दी और बड़े सतर्कता से देखे कि कोई मिठाई जैसे उनके कमरे में न रहे। तैसे गुरु चरण में अपराध किया, फिर वैष्णव अपराध, फिर भगवान के चरण में अपराध, इसी प्रकार उसकी भक्ति जीवन संपूर्ण रूप में नष्ट भ्रष्ट हो गया, वो नर्क जाने के कैंडिडेट बन गया, कौन, रामचंद्रपुरी। तो इसलिए ये जो अपराध है बड़े जघन्य अपराध, कौन सा, गुरु के चरण में ऐसे बचना चाहिए हमेशा बहुत सतर्कता से, गुरु चरण में अपराध। समय हो गया ज्यादा डिटेल बताने के हैं और कई अब हैं, तो कैसे हम वैष्णव अपराध से बच सकते हैं, मैं नरोत्तम दास ठाकुर कहते कि इसको अपनाओ, तादेर चरण से भी भक्त सने बास, जन्म है यही अभिलाष, मन में दूसरा अभिलाष मत रखो, जन्म जन्मांतर केवल यही आदर्श बा यही भावना रहना चाहिए कि वैष्णव की सेवा करके वैष्णव के संग में रहना, इसकी अलावा मन में दूसरे इच्छा बा अभिलाषा नहीं लाना चाहिए। अंतिम समय में प्रभुपाद जी ने जब रहते थे प्रभुपाद हाउस में वृंदावन में, उनके एक गॉड ब्रदर आते थे उनको मिलने के लिए, अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, प्रभुपाद जी बड़े घनिष्ठ गुरु भाई थे, बाबा जी थे लेकिन फिर परमहंस स्थिति में थे, प्रभुपाद जी कहते थे कि परमहंस है, अपने शिष्यों को यदि वो बाबा जी से मिलना मना करते लेकिन इनके साथ मिलना मना नहीं था, इनके साथ मिल सकते थे, तो उन्होंने आते थे प्रभुपाद जी मिलने के लिए, प्रभुपाद और वो दोनों अपने अपने पास में जो आ जाते थे गला मिलाते हुए ये श्लोक गाते थे, ये पद गाते थे, तादे चरण से भी भक्त सने बास, जन्मे है यही अभिलाष, प्रभुपाद जी के अंग से अश्रु और उनकी अकिंचन कृष्णदास बाबा जी के अंग से भी अश्रु टपकता था। तो इसलिए ये वैष्णव की जो वैष्णव अवस्था से बचने के लिए हमेशा ये भावना रखें, वैष्णव के संग में रहें और वैष्णव की सेवा करने की भावना, ये भावना जब रहेगा वैष्णव प्रसाद से हम बच सकते हैं। और नाम नरोत्तम दास ठाकुर के नाम संकीर्तन से ले गया। दूसरे उपाय कहते कि जिस वैष्णव के चरण में अपराध किए हो उसी वैष्णव के पास में जाओ, उससे माफी मांग लो, फॉरगिवनेस, बेग फॉर हिज मर्सी। और ये आपका कर्तव्य है, लेकिन आप गए वैष्णव के पास में माफी मांगने के लिए, वो कहेगा नहीं, तुम्हारा अपराध का माफी नहीं है, गेट आउट यहां से, मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। तो फिर स्थिति में आप लोग फिर शांत होकर अपने पश्चाताप करना चाहिए, थोड़ा शांत रहना चाहिए, कुछ दिन प्रतीक्षा करना चाहिए। जब फिर भी वो वैष्णव क्षमा नहीं कर रहा है तो अंत में हरिनाम के आश्रय लेना चाहिए, तब हरिनाम प्रभु आपको क्षमा कर देंगे, और जो जो अपराध है जिसके चरण में अपराध करते हैं वही अपराध उसके पास में उल्टे चले जाता है, वही वैष्णव अपराध अपराधी बनकर बैठता है, फिर आप अपराध से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए प्रारंभ से उसी व्यक्ति से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, क्षमा नहीं देता तो थोड़ा दिन वेट करना चाहिए, उसकी इतना कुछ सेवा करने के मौका देखना चाहिए, फिर भी नहीं हो रहा है तभी अंत में हरिनाम प्रभु को आश्रय करना चाहिए, बड़े दैन्यता से दिन रात नाम जपने से व्यक्ति फिर वैष्णव अपराध से मुक्त हो जाता है, हरिनाम प्रभु क्षमा करते, लेकिन प्रारंभ से नहीं। आपको कर्तव्य कि जिसके चरण में अपराध किए तो उससे क्षमा मांगना, क्षमा नहीं करता है तो फिर थोड़ा उसकी सेवा करने की पूरा हृदय से दिल से कुछ मौका देखिए उसके प्रसन्न करने के लिए, तो कुछ नहीं हो रहा, अंत में हरिनाम प्रभु क्या आश्रय, वो फिर आपको क्षमा कर देते हैं। सब समय एक मेंटालिटी डेवलप करना चाहिए वैष्णव के सेवा भाव, किसी भी वैष्णव को देख के उनकी कुछ ना कुछ सेवा करने की भावना रखना चाहिए, सेवा करके उनसे कुछ आशीर्वाद लेना चाहिए। एक उदाहरण दी जाती नवद्वीप में गौरांग महाप्रभु के समय में एक व्यक्ति था देवानंद पंडित, रहता था नवद्वीप में, और वो अपराध किया था किसके चरण में, शिवास ठाकुर के चरण में, भागवत स्कूल खोल के बैठा था, भागवत पढ़ाता था और एक बार उस भागवत कक्ष में वो भागवत चर्चा करता था, शिवास ठाकुर जाते थे, प्रहलाद महाराज का प्रसंग चलता था, तो ये तो स्वयं नारद अवतार थे, बैठ गए उधर सुनने के लिए, और जो प्रहलाद के चरित्र बना था ये कभी कभी खड़े हो जाते थे, हरि बोल जय प्रहलाद ऐसे करते थे, तो उसको देखकर वो कहा कि अरे उसके चेले लोग कहे कि ये भावुक है, कहाँ से आ गया, क्लास में डिस्टर्ब करता है बार बार, खड़ा होता है नाच लेता है, कभी हरि बोल करता है, ये क्या है, तो क्लास में बार भावुक है, और वो दो तीन स्टूडेंट मिलकर उसको उठाकर, वो आते नहीं थे, जबर आए उसको फोर्स से जबर से उठाकर बाहर कर दे, वो देख रहा था, वो कुछ बोला नहीं, कौन देवानंद पंडित, तो इसलिए उसको अपराध लगा शिवास ठाकुर की तरफ। महाप्रभु को भी देखे थे उसको, फिर देवानंद पंडित को देखिए ये दुनिया में सभी को मैं कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा, ले तुझे नर्क लोरव नर्क में डालूंगा, तूने अपराधी है वैष्णव अपराधी शिवास के चरण में। वो देवानंद पंडित कुछ बोलने का था नहीं, क्योंकि वो बड़ा जानते थे कि निमाय पंडित है, उनके साथ योग्य शास्त्र युक्ति भी नहीं कर सकता है, कई बार जानते थे तो वो बड़ा शांत रहता था, कुछ नहीं बोलता था, पूरे दैनिक से खड़ा रहता था, लेकिन दूसरे एक वैष्णव को दया हुआ। एक दिन महाप्रभु के साथ में बक्रेश्वर पंडित भी आए थे, और बक्रेश्वर के पंडित के सामने ही महाराज मैंने महाप्रभु उसको डांटते थे, तो उसके मन में दया हो गया, किसके मन में, बक्रेश्वर पंडित, सोचते कि इसको कैसा उद्धार किया जाएगा, कुछ ना कुछ उपाय इसको तो उद्धार करना चाहिए, बेचारा है दैनिक से खड़ा रहता, महाप्रभु इतने डांटते हैं और उसको उद्धार करना चाहिए, सोचकर एक दिन उन्होंने कीर्तन करते करते उसके घर के सामने नवद्वीप में से नृत्य करते करते, महान बहुत बड़े नर्तक थे, कौन बक्रेश्वर पंडित, जितने गौरव पार्षद में नाचने वाले हैं वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, एक बार डांसिंग स्टार्ट होता तो 72 घंटा 72 आवर्स, 3 दिन 3 रात बिना खाए पिए ऐसे वो डांसिंग करते रहेंगे, 72 घंटा तक नाच सकते हैं। तो इसलिए तो वह नाचते नाचते आए और वहीं मूर्छित होकर देवानंद पंडित के घर के आसपास में गिर पड़े मूर्छित होकर, तो देवानंद पंडित उनको उठा के लेकर अपने घर में गया और उनके बहुत सेवा शुश्रूषा किया, इनको फिर जब प्रकृतिस्थ हो गए और इनको स्नान कराया, फिर इनको अच्छे वस्त्र पहनाया, फिर उन्हें बैठा कर उनको भोजन कराया, खिलाया, भोजन खिलाया, पानी पिलाया, तभी बक्रेश्वर पंडित प्रसन्न हो गए और उठकर कहे कि कृष्णे मतिरस्तु, देवानंद भगवान के चरण में तुझे प्रेम प्राप्त हो जाए, तभी और संकट आ गया, किनको, महाप्रभु को कहे थे कि तुझे रौरव नरक में डालो, प्रेम नहीं दूंगा, लेकिन ये आशीर्वाद दे दिया, कौन बक्रेश्वर पंडित, तो महाप्रभु ने अपने वचन को टू टाल लिया और इसके वचन को स्वीकार कर लिया, किसके, बक्रेश्वर को, तो दूसरी बार जब वो देखा देवानंद को, महाप्रभु भरे और कोई धीर नहीं थे, तो देवानंद तुमने मेरा महान भक्त बक्रेश्वर का सेवा करके उसको प्रसन्न किया, बक्रेश्वर ने तुझे आशीर्वाद दिया कृष्ण प्रेम मिलेगा, अवश्य तुझे मिल जाएगा। तो इसी प्रकार यदि हम वैष्णव की सेवा की भावना रखेंगे, हमेशा वैष्णव की सेवा करते रहेंगे, कोई ना कोई परमंश वैष्णव होगा तो हम जानते नहीं, लेकिन फिर भी वो आशीर्वाद के बल पर हम फिर भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमेशा वैष्णव की सेवा की भावना रखना चाहिए, हैं तादे चरण से भी भक्त सने बात, हमेशा सेवा भावना कि कोई भी वैष्णव का तो सेवा करें, हैं मन में भाव नहीं रखें कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, ऐसा नहीं, वैष्णव की भावना सेवा की भावना रखें वैष्णव की प्रति कुछ ना कुछ, तो फिर हम ऐसे ही वैष्णव अपराध से मुक्त हो सकते, वैष्णव के आशीर्वाद के बल पर भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। किसी वैष्णव की सेवा करना तो, और कई प्रकार के अपराध जो दस अपने दस नाम अपराध है, मैं सुना अभी थोड़ा दिन पहले आप लोग को भी सेमिनार हुआ था इधर हैं हरिनाम की ऊपर, हैं इसलिए नाम अपराध को कैसे मार्जन करना है आप लोग सुने होंगे सब, हैं तो उसकी मैं चर्चा करने की टाइम भी शॉर्टेज है, तो ये विशेष रूप में आप इसलिए आपको ये जो सबसे बड़ा अपराध श्रेष्ठ अपराध कौन सा है, वैष्णव अपराध, ये दशनाम अपराध से सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, तो उसको चर्चा की और ऐसे कैसे इसे मार्जन होना। इसके अलावा यदि जो जब हम वैष्णव साधु को देखते हैं तो उनकी जो ब्लास्फेमी करते हैं उनकी निंदा करते तो फिर उनकी प्रशंसा कर लेना चाहिए, पहले अपराध जो वैष्णव की निंदा करना तो निंदा करते तो फिर उनकी प्रशंसा करो, जिस मुख में आप इनको निंदा किया उसी मुख में फिर उनकी अच्छा गुण को प्रशंसा दूसरों को बोलो, जिस मुख में उनकी बुरा गुण को देखकर उनको निंदा किया था उसी मुख में फिर उनकी क्या प्रशंसा करना शुरुआत करो, हैं उसी मुख में बच्चे वहां पर उन्हें कहते थे कि जिस मुख में तुम जहर खाया है विष खाया है उसी मुख में फिर अमृत खाओगे तो फिर वो आपके विष का जो प्रतिक्रिया नष्ट हो जाएगा, हैं इसके कोई दूसरे उपाय नहीं है, यदि आपके पैर में कोई कंटा चूहा है वो पैर से ही निकालना पड़ेगा, इसको नहीं कि पैर का पैर में कंटा घुसा और आप उसे यहाँ से कहीं कान से निकाल लो, ये नहीं होगा। इसलिए वैष्णव के चरण में अपराध किया तो उसी वैष्णव से माफी मांगना पड़ेगा, इनको निंदा किया तो उन्हीं की प्रशंसा करना पड़ेगा, और जैसे भगवान अन्य देव देवताओं को आप भगवान के तुल्य समझते हो उनसे स्वतंत्र समझते हो अपराध होता, तो इसलिए आपको जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु ही परम भगवान है, इसमें पूर्ण निष्ठा रखो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, फिर आप दूसरे अपराध से बच जाओगे। तीसरे अपराध है तीसरा अपराध क्या, गुरु अवज्ञा व गुरु को साधारण समझना, तो इसलिए एक्सेप्ट द गुरु हु प्रमोट द होली नेम विथ अटमोस्ट सिंसियरिटी, तो इसलिए गुरु की स्वीकार करना, गुरु वाणी को जीवन में उतारने के लिए पूर्ण प्रयास करना, और जो श्रुति शास्त्र की निंदा किए हो चौथा अपराध एक्सेप्ट द स्क्रिप्चर दैट ग्लोरीफाई द होली नेम ए सुप्रीम, जिस शास्त्र में होली नाम की होली नेम बा नाम की महिमा का व्यक्ति है इसको स्वीकार करो, हैं इसको प्रामाणिक मान लेने से फिर ये अपराध नष्ट हो जाता है, कौन सा श्रुति शास्त्र निंदा नहीं, जो शास्त्र में वर्णन है तो उसको फिर प्रशंसा करो उसको स्वीकार करो। बिलीव इन योर हार्ट दैट द होली नेम इज कंप्लीटली प्योर एंड स्पिरिचुअल, पंचम अपराध होली नाम की महिमा को काल्पनिक समझना, तो इसलिए आप इसको काल्पनिक न समझकर जो शास्त्र में बता गया उसमें पूर्ण विश्वास रखो, हैं कि इनकी जो महिमा होली नेम इज कंप्लीटली प्योर एंड स्पिरिचुअल। छठा अपराध जैसे ही नॉट टू हैव कंप्लीट फेथ है, छठा अपराध हरिनाम की महिमा पर पूर्ण विश्वास, इन्हें अगाध महिमा सुनने पर भी उसे नहीं, छठा अपराध है कि अर्थवाद के आरोप करना नाम में, तो इसलिए जब अर्थवाद आप गलत अर्थ लगाते उसको बदले में जब आपको पूर्ण विश्वास रहेगा किसमें, न हरिनाम भगवान हरि से अभिन्न है, भगवान हरि से उनके नाम नाम और नामी दोनों अभिन्न है, नाम अजंता मणि कृष्ण, तो इसको जब विश्वास करोगे फिर ये अपराध से बच जाओगे, कौन सा अर्थवाद करने का, जो अर्थवाद करने का जरूरत नहीं, नाम और नामी दोनों भिन्न नहीं है एक है, तो इसमें विश्वास रखो। और सातम अपराध जो नाम की बल पर पाप करना, ये भी बड़ा जघन्य अपराध, वैष्णव अपराध की बात ये नेक्स्ट है, नाम की बल पर पाप करना, तो इसमें भी बच सकते हो, और जो नाम के अपराध किसी ने करते ना कि मोटिवेशन रहता है, हैं पाप किसी ने करना कोई मोटिवेशन रहता है कुछ फायदा प्राप्त करने के लिए, सोचकर कभी कोई झूठ बोल देता है नाम की बल पर पाप करने के लिए आपको हिम्मत होता है, सुस्त क्या रहे सही, कुछ फायदा भौतिक इंद्रिय तृप्ति के साधन को प्राप्त करके ख्याति संपन्न होने से कुछ। तो इसलिए बड़े सावधानी के साथ आप जो हरिनाम ले रहे हो तो उसके साथ साथ कोई भौतिक इच्छाओं को मत रखो, हैं भौतिक इच्छा के साथ नाम मत लो। जानो कि नाम प्रभु को भौतिक इच्छा को प्राप्त करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। शुद्ध भाव से नाम लेने के लिए भौतिक अपराध भौतिक इच्छा से मुक्त होकर नाम लेने से सातम अपराध से मुक्त हो जाते हो। प्लीज द ग्लोरी ऑफ द प्योर होली नेम ओनली टू दोज हु पजेस फेथ इन द नेम। जिनके पास में प्रकृत में श्रद्धा है उनको हरिनाम के प्रचार करने से आठवां अपराध से मुक्त हो सकते हैं। नवम अपराध एंड गिव अप ऑल इंपायर्स एंड सेल्फ सर्विंग रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज। ये प्रकृत में ये नव आठवां अपराध से ये रिमेडी है। अब नवम अपराध था वो रिमेडी था। जब हम ये हरिनाम की महिमा को केवल जिनके श्रद्धा है उनको प्रचार करने से, हम अश्रद्धालुओं को प्रचार करने के जो मिस्टेक से बच जाते हैं, और जो श्रुति शास्त्र के वैदिक कर्मकांड के साथ में हरिनाम की महिमा को तुलना करना, इससे बच जाते हैं। जब आप समस्त इंपायर्स बस सेल्फ सर्विंग रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज को त्याग देंगे, केवल हरिनाम में आश्रय लेंगे, फिर वो अपराध से बच जाएंगे। और मेडिटेट ऑन द होली नेम विदाउट डिस्ट्रैक्शन। दसम अपराध कैसे बचेना, जब हम अटेंटिवली हरिनाम का जब करेंगे। दसनाम अपराध करने के बाद भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा यह भी एक अपराध है, कौन सा, जब के समय में अन्य मनस्क रहना। इसलिए सारा अपराध जो शुरुआत होते कहां से, जब अन्य मनस्क और जब करते हैं अन्य मनस्क, जब के समय अन्य मनस्क रहने से ये अपराध सारे स्टार्ट होते हैं, दसनाम अपराध। इसलिए इनको समाप्त करने के लिए अटेंटिवली जब करना, जब के समय में अन्य मनस्क नहीं रहना है। कैसे जप करना है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर स्वयं सिखाया, वो नाम के आचार्य है। हरिनाम को जप करना कैसे, आचार्य से सीखो। वो कैसे जप करते थे, तुलसी महारानी के सामने बैठकर जप करते थे। कहीं भी तुलसी महारानी किसी शुद्ध भक्तों की संगति में, अर्थात तुलसी महारानी जो भगवान के नित्य शुद्ध भक्त है इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए तुलसी के सामने जप करो या प्रभुपाद जी के सामने बैठकर जप करो, किसी उत्तम वैष्णव बा भगवान के सामने शिव विग्रह के सामने भी जप करना। पद्म पुराण में कहा गया कि जप करने से कैसे फायदा होता है, कैसे जप किया जाता है। तो कहेगी जो बेडरूम में बैठकर जप करता है, जिस बिस्तर में सोया है, सोता है, खाता है, पीता है, सब जिस रूम में उसी पर वही बेड के पर सोया था, उठकर से वही नाम जपना शुरुआत करता, सबसे निकृष्ट तर्क है। उससे और अच्छा है कि यदि वो स्नान आदि करके फिर उसके शुद्ध स्थान में आकर जप करना, कुछ गंगा ने कोई गौशाला में आकर जप करता है वो, उससे अच्छा है। जो आपके घर में बेडरूम में बैठकर जप करना, उससे श्रेष्ठ की गौशाला में बैठकर जप करना, जहाँ गाँव गोमाताएं रहते हैं उस परिवेश में, वो सत्वगुण के परिवेश माना जाता है जहाँ गाय रहते हैं। तो इसलिए गौशाला में जप करना उससे अच्छा है। उससे श्रेष्ठ है गंगा या जमुना पवित्र नदी के किनारे बैठकर जप करना। उससे भी श्रेष्ठ है तुलसी महारानी के सामने जप करना, गंगा जमुना किनारे, जैसे हरिनाथ ठाकुर गंगा किनारे ही कुटिया बनाते थे और तुलसी महारानी रखकर जप करते थे। उससे भी सस्ते पद्म पुराण कहते कि यदि विग्रहों के सामने जप करोगे, सालग्राम भगवान जहाँ रहते गिरिराज जी रहते वह विग्रह अब से विग्रह रहते और उनके सामने बैठकर जो जप करोगे ये सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो जब इस प्रकार जप की शुद्धता के लिए हम बढ़ा सकते हैं, इसकी कैसे प्योरिटी बढ़ेगा प्रयास कर सकते हैं। इसलिए भक्तों की संगति में बैठकर जप करना ही श्रेष्ठ है, मंदिर में भक्तों की संग में बैठकर जप करना, तभी हम जोर जोर से जब जब करते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में जब आप परमहंस नहीं बने हैं तो इसलिए जोर जोर से जब करना, ये माइंड जब डिस्टर्ब करता है तो इसको चांस नहीं देने का इधर उधर भटकने के लिए। जब भटकना याद रख जाता तो और जोर से जब करना चाहिए। दूसरे भक्तों में डिस्टर्ब होता तो चल के थोड़ा साइड होकर जोर से जब करना चाहिए, इसको जैसे चांस न दिया जाए। तो इसी प्रकार हम इसे नाम अपराध से विशेष रूप में जो अपराध है वैष्णव अपराध से बच सकते हैं। जब तक हम वैष्णव अपराध से बचेंगे नहीं, बार नाम अपराध से अन्य नाम अपराध से बचेंगे नहीं, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। ये सबसे बड़ा अनर्थ है, इसके अलावा जो सेवाप है, सेवा अपराध सारे नष्ट हो जाता है किसमें, हरिभजन करने से, बा किसी प्रेयर रिसाइट करने से। जैसे कोई पुजारी अल्टर में सेवा करता है, सेवा के चरण में कुछ अपराध होता तो उसको कहा जाता है कि भगवत गीता के एक अध्याय पढ़ लेना चाहिए। यदि वो गीता के एक अध्याय पढ़ता तो इसके सारे अपराध मार्जन हो जाते हैं। तो गंगा जमुना पवित्र नदी में स्नान कर लेने से बा भगवान के नाम जप करने से हरि स्थाने अपराधे तारे हरि नाम। इसलिए भगवान के चरण में भक्ति रसामृत सिंधु में 32 प्रकार के अपराध बताए गए और कई अपराध, लेकिन इन अपराध से मुक्त होना इतनी जघन्य नहीं है। इन अपराध से हम मुक्त हो सकते केवल भगवान के हरि भजन करने से, गीता पढ़ने से, कई स्तुतियां नियमित बने सुंदर स्तुतियां से, भगवान की स्तुति जो भाव पुराण में दी गई उसको जो गाने से हैं, इससे मुक्त हो सकते हैं। कई प्रकार का सेवा अपराध हो, मंदिर में आने के जान वाहन के साथ चढ़ के जान में कहा पहले किसी वाहन में चढ़कर मंदिर में प्रवेश करना है, भगवान को पीछे करके बैठना, घुंटन पे से पकड़ कर बैठना, भगवान के सामने किसी को गाली देना, झगड़ा करना, ये सब अपराध होता है। कई प्रकार के अपराध कहा गया, लेकिन ये सब अपराध से मुक्त हो जाता है व्यक्ति जब क्या करेगा, ध्यान पूर्वक जप करेगा, अन्य स्तुतियां भी गाएगा, गीता पढ़ेगा, तो उससे भी मार्जन हो जाता है। इसमें सेवा अपराध इतनी जघन्य नहीं होता वैष्णव अपराध की तरह है, लेकिन यही सेवा अपराध ही नाम अपराध बन जाता है। जब आप सावधानी नहीं रहोगे फिर वो सातम अपराध बन जाएंगे। कौन सा? नाम की बल पर पाप करना, वो बन जाए फिर नाम अपराध बन जाएगा, फिर आस्ते आस्ते वैष्णव अपराध परिणत हो जाएगा। इसलिए सतर्क रहना चाहिए प्रारंभ से, और नाम जप और स्तुतियों की गान की माध्यम सेवा अपराध से मुक्त हो सकते हैं। धाम अपराध, आप लोग अभी से धामवासी नहीं हो, मेरा रोड में रहते फिर भी ये धाम है, लेकिन धाम में जब रहोगे तो फिर ये अपराध से बचना पड़ता है। सबसे पहला धाम की अपराध है कि गुरु की गुरु को साधारण समझना, उनको अवज्ञा करना, जो अपराध। तीसरे अपराध नाम अपराध में, वो पहला अपराध है किसका? धाम अपराध है। धाम में इसलिए जाने के लिए गुरु की परमिशन होना चाहिए। गुरु यदि मना कर रहे धाम में मत जाओ, धाम में बास मत करो, तुम योग्य नहीं हो, तो फिर आप गुरु आदेश को उल्लंघन करके सोचोगे कि नहीं वृंदावन में फाट खरीद के रहूंगा, तो फिर भक्ति में आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि गुरु के चरण में अपराध है। गुरु अपराध होना चाहिए। धाम अपराध का सबसे पहला अपराध है गुरु को साधारण समझना, बा उनके आदेश को उल्लंघन करना। जिनकी कृपा से आप भक्ति में प्रवेश किए तो वो उस गुरु के आदेश को उल्लंघन करके धाम में पहुंचोगे तो आप धाम अपराध करोगे। थिंग दैट दी होली धाम इज टेम्पोरारी, ये नहीं सोचना कि ये कोई जैसे भौतिक जगत टेम्पोरारी है, बात बात पड़े में नष्ट हो जाता है, ऐसे धाम भी नष्ट हो जाता है। धाम ऐसे नष्ट नहीं होता है, भगवान के नित्य धाम से ये अभिन्न है। इसलिए मथुरा डिस्ट्रिक्ट में रहते हुए भी वो इसमें नहीं है, भगवान के नित्य धाम टेम्पोरारी बात क्षणिक नहीं है, विनाशशील नहीं है। तो कमिट भावलेंस टुवर्ड दी रेसिडेंट्स ऑफ दी होली धाम और एनी ऑफ द पिलग्रिम्स वो कैम देयर थिंग दे आर ऑर्डिनरी मंडन पीपल। जो धामवासी हैं उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। पर धाम में जो प्रवेश भी करते तीर्थयात्रियाँ उनको भी साधारण नहीं समझना चाहिए। धाम में प्रवेश करना इतने आसान नहीं होता है। इसे वृंदावन धाम भारपाल के रूप में भवन शंकर जी बैठे हैं, भूतेश्वर, तकलेश्वर, कामेश्वर, गोपेश्वर। जब व्यक्ति देखते कि ज़्यादा अधिक पापी है तो फिर उसको छोड़ते नहीं धाम के अंदर ही है। कई जन्म की सुकृति पूर्वा के माध्यम से व्यक्ति धाम में प्रवेश करता है। इसलिए धाम में रहकर धामवासियों के साथ निंदा बा उनकी झगड़ा नहीं करना चाहिए, पर जो तीर्थयात्रियों के साथ में भी। तो परफॉर्म मंडन एक्टिविटीज व्हाइल लिविंग इन दी होली धाम। होली धाम रहकर कुछ सही पाप युक्त कर्म नहीं करना चाहिए, किसी झूठ बोलना आदि, हिंसा करना, ये सब जो पाप कर्म धाम में नहीं करना चाहिए। और अर्निंग बाई बिजनेस करके अपना जीविका अर्जन करना, कुछ बिजनेस धाम के रहे धाम में रहकर कुछ बिजनेस करना, बा ऐसा ही मंदिर बनाकर, इसलिए बना दिया परिक्रमा रास्ता में मंदिर बना दिया, बड़ा कुछ नहीं करना पड़ेगा, परिक्रमा करने लोग जाएंगे बस भेंट चढ़ाते रहेंगे और इसमें मेरा परिवार भी चलते रहेगा, ये धाम अपराध है। यदि ऐसे ही भावना लेकर कोई मंदिर बना दे तो बिजनेस करके कुछ जीविका निर्वाह करने की भावना रखा और थिंग दैट दी होली धाम बिलोंग्स टू सेम मंडन कंट्री और प्रोविंस, ये भारत में है बा उत्तर प्रदेश में एक मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, ऐसे जो भावना रखते हैं इसमें धाम स्वतंत्र है। धाम भगवान के नित्य धाम गौरव वृंदावन से बा नवदीप जो आध्यात्मिक जगत में उससे अभिन्न होता है। बा ऐसे ही सोचना है कि कोई देवी डेमीगॉड का जो कोई कुछ देवताओं की धाम भी कुछ देवी देवताओं की धाम है, देवी देवी शक्ति का क्षेत्र सब है, शक्तिपीठ है ना कहीं, जहाँ पर शंकर जी ने शक्ति को लेकर वहां मैंने सती को लेकर घूमते थे, उनके भिन्न भिन्न अंग भिन्न भिन्न जगह में गिरा था, वो देवी भक्त से मानते उसको धाम कहते। तो इसलिए उनके साथ में समझना दिग्ध भगवान श्री कृष्ण के धाम के साथ में ऐसे ही अन्य देवी देवता का धाम को है तुलना करना व समान समझना ये अपराध है। तो कमिट सिंफुल एक्टिविटीज, पाप काम नहीं करना चाहिए। तो कंसिडर वृंदावन एंड नवदीप डिफरेंट, ये दोनों भी दो अलग नहीं है, नवदीप और वृंदावन तथा जगन्नाथपुरी। और आचार्य लोग ने कही कि ये तीनों एक जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु की लड़ाएं हो बात, चैतन्य महाप्रभु जिस जिस धाम में लीलाओं को प्रकट किए, तो ये अभिन्न मानना चाहिए। तो ब्लास्फेम दी शास्त्र स्विच ग्लोरीफाई दी धाम, जो धाम की महिमा को वर्णन करने वाले जैसे शास्त्र है, पद्म पुराण स्कंद पुराण विशेष रूप में धामों की महिमा वर्णन है, तो उसको ऐसे ही साधारण नहीं समझना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। अरे ऐसे ही लिखा हुआ क्या है, हैं तो थोड़ी हमारा बॉम्बे कुछ कम है ना क्या, वृंदावन ही सब होता है। कई कई इसको कहते हैं तो बॉम्बे भी धाम है। तो ऐसे ही ब्लास्ट में जो शास्त्र में जो व्याख्या दी गई इसके ऊपर चर्चा नहीं होना चाहिए। टू बी फेथलेस एंड टू थिंक दैट ग्लोरीज ऑफ धाम आर इमेजिनरी, धाम की महिमा को काल्पनिक समझना ये अपराध होता है। इस प्रकार धाम की अपराध है। यदि आप नाम अपराध से बच जाते हो प्राय धाम अपराध से भी बच जाते हैं। इसलिए ये सब अपराध ये अनर्थ हैं, ये आपकी अपराध युक्त अनर्थ है। ये कहते हैं अपराध जात अनर्थ, बाबू अपराध युक्त अनर्थ है, अपराध तो अनर्थ है, अपराध के कारण ये सब अनर्थ जात सृष्टि होता जो कि हमें भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देता है, है? तो इसलिए इसे बचना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कालाम। और दूसरा जो रह गया भक्ति जात अनर्थ, भक्ति के साथ साथ भी अनर्थ होते हैं, तो उसकी चर्चा काल क्लास में की जाएगी। ठीक है, हरे कृष्णा। समय तो क्रॉस हो गया, फिर भी कोई एक दो प्रश्न पूछ सकते, कोई प्रश्न किसको चाहिए? हाँ हाँ
हाँ।
तो ये तो कहा गया ना, जो अज्ञान से अपराध कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? फिर वैष्णव की सेवा करते रहो, सेवा भाव को बढ़ाओ। जगाए माधाए जब ऐसे ही उद्धार हुए तो फिर भी रो रहे थे दिन रात, कहते थे कि हम प्रभु बहुत अपराध किए हैं, हम तो बहुत अपराधी है, कैसे मुक्त होंगे, रोने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने इनको कहा कि ठीक है, आप गंगा के किनारे घाट बनाओ, वैष्णव के स्नान के लिए घाट बनाओ, और सब वैष्णव आएंगे उसी घाट में स्नान करेंगे, जो भी स्नान करना आता है उसको प्रणाम करो, उसकी कुछ ना कुछ सेवा करने की मौका देखो। ऐसी प्रकार जो सेवा भाव को आप मन में रखोगे तो फिर वैष्णव अपराध से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए कहा कि वो देवानंद पंडित ने कैसा मुक्त हो गया अपराध से, हैं शिवास ठाकुर की तरह अपराध करके भी बक्रेश्वर पंडित की सेवा किया और आशीर्वाद लिया है। अज्ञान से यदि अपराध होता है तो फिर आप दूसरे वरिष्ठ वैष्णव की सेवा करते रहो, जो सेवा करोगे उसी से उद्धार होगे, उससे आशीर्वाद लेने से है। वैष्णव से आशीर्वाद लो, कृष्ण प्रेम मुझे प्राप्त हो जाए, कोई वैष्णव आपको आशीर्वाद कर देगा तो फिर उससे कल्याण होगा। इसलिए सेवा भाव को रखो, वैष्णव की सेवा करो है। साड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाइचे के बाद, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहे कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वैष्णव सेवा किए बिना भगवत धाम चला गया, नहीं जा पाएगा। वैष्णव का सेवा करते रहो, उनका आशीर्वाद लो, इसी से आगे बढ़ोगे। सेवा भाव को अपना है, भक्ति का अर्थ ही सेवा, दूसरे कुछ नहीं। प्रेममयी सेवा, हरे कृष्ण मंदिर जप रहे वही मांग रहे हैं, राधा कृष्ण हमको आपका सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, सेवा सेवा दो, सेवा अधिकार दिए करो मरे, सेवा अधिकार दिए करो निज, बस सेवा अधिकार, सेवा करते रहो, सेवा भावना को आगे बढ़ाओ, उससे सब कुछ आगे बढ़ेगा है। ठीक है, सीढ़ी सीढ़ी फिटी में नहीं है, सीढ़ी कहाँ से आएगा? ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की।
हरे कृष्णा, आप लोग कृपया 2 मिनट रुक जाइए।